आए थोड़ी देर के लिए खड़े रहते हैं जबकि हमारे सर दुआ के लिए झुके हुए हैं, और अब हमारे सर झुके हुए हैं और मेरा ईमान है, हमारे दिल भी झुके हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आज रात कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें खास तौर पर दुआ में याद रखा जाए। क्या आप अपने हाथ उठाकर कहेंगे, ऐ खुदा आज रात मुझे वो अता कर दे जिसका मैं मुतलाशी हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे आसमानी बाप, अब हम बड़ी आजिजी के साथ इस अजीम फजल के तख्त के सामने आते हैं। ईमान के वसीले हम उस जानिब बढ़ते हैं जहां खुदा और फरिश्ते और सराफीम और सारा आसमानी लश्कर एक साथ इकट्ठा होता है, क्योंकि उसने कहा है कि एक चिड़िया भी जमीन पर नहीं गिर सकती जब तक आसमानी बाप को मालूम ना हो। तो फिर वो कितना ज्यादा जानता है कि यहाँ सैकड़ों लोगों ने अपने सर झुकाए हुए हैं और उसे अपनी खास दरखास्तों के लिए पुकार रहे हैं। ऐ बाप, आज रात जरूरतमंद संसार को देख, जबकि हम जरूरतमंद लोग हैं, और मैं दुआ करता हूँ, ऐ खुदा देख हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपने ईमान का इजहार तुझ जिंदा खुदा के हजूर कर रहे हैं जो दुआ का जवाब देता है। हम दिल और कानों के नामखदूम संसार से निकलकर बाहर आ गए हैं ताकि बाहर आकर एक अलग जीवन गुजारे और ये इकरार करते हुए जिंदगी गुजारे कि हमारा ईमान तुझ पर है। आज रात हमने अपने हाथ उठाए हुए हैं और ये कह रहे हैं हम जरूरतमंद हैं। प्यारे खुदा हर एक को उसकी दरख्वास्त का जवाब दे। और फिर ऐ बाप, हमारी दुआ है कि तू आज रात कलाम के वसीले हमसे मुलाकात कर। हम यहाँ इस्लाह और समझ बूझ के लिए आए हैं ताकि हम जान सकें इस मौजूदा जमाने में कैसे जिंदगी गुजारनी है, आगे क्या करना है और किसकी तलाश करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावंद की आमद नजदीक आ रही है उन तमाम निशानों के मुताबिक जिनकी पेशनगोई नबियों ने की थी। हम उस वक्त के करीब पहुंच रहे हैं खुदावंद, जब तेरे बच्चों को मुकम्मल छुटकारा मिल जाएगा। ऐ खुदा हम में से हर एक वहाँ हो। ऐ बाप, काश कोई एक भी पीछे ना रह जाए। हमारा यहाँ आने का यही मकसद है खुदावंद, हम तुझसे प्यार करते हैं और हम उस घड़ी के लिए तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं। आज रात हम चाहते हैं कि तू हमसे फिर कलाम कर और बीमारों को शिफा दे। इस इमारत में जितने भी बीमार और परेशान हैं, हम दुआ करते हैं कि तू उन्हें शिफा अता कर दे खुदावन, और खास तौर पर उन्हें जो रूहानी जरूरतमंद हैं, हम दुआ करते हैं तू खोई हुई हर जान को बचा ले, हर एक ईमानदार को पाक रूह से भर दे और अपने ईमान रखने वाले बच्चों को कुव्वत से ताजा कर दे। ऐ बाप, ये चीजें बख्श दे। हम बहुत कुछ मांगते हैं क्योंकि तूने हमें बताया है कि जब मांगो कसरत से मांगो, बहुत सी चीजें मांगो, बड़ी चीजें मांगो ताकि हमारी खुशी पूरी हो सके, और हम ये चीजें यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आप तशरीफ रखें। मैं यकीनन आज रात यहाँ आना एक एजाज समझता हूँ और यहाँ इस हाई स्कूल में दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ हूँ और इन अच्छे लोगों के सामने मौजूद हूँ जो अंजील सुनने के लिए यहाँ आए हैं। मैं खुदा का रहम मांगता हूँ कि जहाँ तक मैं सच्चाई को जानता हूँ वो मेरी आप तक सच्चाई बयान करने में मदद करे। वो अब भी एक इंसान के मुंह को बंद कर सकता है जैसे उसने शेर के मुंह को बंद किया था, और अगर मैं कभी कोई ऐसी बात कहने की कोशिश करूँ जो गलत हो और उसकी मर्जी के खिलाफ हो, तो मेरी मुखलस दुआ ये है कि वो मेरा मुंह उस बात के लिए बंद कर दे ताकि मैं वो ना कहूँ, क्योंकि सचमुच मैं खुद भी फरदोस में जाना चाहता हूँ और इस तरह मैं वहाँ कभी नहीं पहुँचूंगा, और इस सब के अलावा मैं एक झूठा रहनुमा बन जाऊंगा, ऐसा शख्स बन जाऊंगा जिसने गलत तरीके से काम किया हो। अगर मैं ये करता हूँ तो इसकी वजह ये है कि मैं इससे मुख्तलिफ नहीं जानता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। अब कल सुबह अगर खुदा की मर्जी हुई तो मेरा इरादा है मैं शादी और तलाक के उन्वान पर बात करूं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी कलमें और कागज साथ लेकर आएंगे। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं, मेरा यहां इंडियाना में वापस आने का पहला मकसद यही था, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था और मैं कोशिश करूंगा इसे कल सुबह लूं, और अगर कल सुबह इसे ना ले सका तो मैं इसे कल रात को लूंगा, लेकिन अगर खुदावन ने चाहा तो मैं कल सुबह इसे लेने की कोशिश करूंगा ताकि इस उन्वान पर बोलूं, जबकि दो मुख्तलिफ ख्यालात हैं, और खुदा हमारी मदद करे ताकि हम इस सच्चाई को जान सके, बस इस सच्चाई को जाने ताकि हम रोशनी और सच्चाई में चल सके। हम आप जानते हैं मेरा एक बुरा स्याफाम दोस्त हुआ करता था। उसने मुझसे कहा था, उसने बताया था, भाई बिली कहा मैं दरिया के किनारे पर किसी मुश्किल का सामना करना नहीं चाहता हूँ। उसने कहा था मैं अपनी टिकट अपने हाथ में लेना चाहता हूँ ताकि जब सीटी बजाई जाए तो मुझे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैंने बहुत अरसा पहले खुदावन से पूछा था अगर कोई गलती है तो अभी मुझे यहीं पर दुरुस्त कर दे। कहा क्योंकि उस सुबह अंधेरा और तूफानी मौसम होगा जब जहाज दूसरी तरफ के लिए रवाना होगा। कहा मैं कोई मुदाखलत नहीं चाहता हूँ, मैं सब कुछ यहाँ ठीक करना चाहता हूँ क्योंकि हम यहाँ किसी मकसद के लिए आए हैं ताकि हर रुकावट और मुदाखलत को दूर कर दें ताकि उस घड़ी हम जहाज पर सवार हो सकें। अब आज रात मैं आपके साथ ज्यादा देर तक बात नहीं करूँगा क्योंकि कल हमारी दो इबादतें हैं और फिर मुझे फौरन वहाँ से कहीं और भी जाना है और मजीद इबादतें लेनी है। लेकिन अब अस्तिशना की किताब में चलते हैं और मैं 16वें बाब की पहली 3 आयात की तलावत करना चाहता हूँ। अस्तिशना 16:1-3, तू अबीब के महीने को याद रखना और उसमें खुदावंद अपने खुदा की फसा करना चौथा महीना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा अबीब के महीने में रात के वक्त तुझको मिस्र से निकाल लाया। वहीं तू खुदावंद अपने खुदा के लिए अपनी गाय बैल और भेड़ बकरी में से फसा की कुर्बानी चढ़ाना जिस जगह को खुदावंद अपने नाम के मस्कन के लिए चुने। अब आज मेरा उन्वान है खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह। अगर आप गौर करें तो ABAD का मतलब है अप्रैल। ये अप्रैल का महीना था जब उन्हें बाहर निकाला गया था। और अब आज रात अजीब बात ये है कि खुदा के परस्तार होते हुए हम इस जमाने में रह रहे हैं और हम मुख्तलिफ ख्यालात के लोगों को देख रहे हैं और जब तक इन बातों के मुतालिक मुख्तलिफ ख्यालात हैं तो मुख्तलिफ सवालात भी हैं, तो फिर पूछे गए हर सवाल का कोई ठीक जवाब भी होना चाहिए। अगर मैं एक सवाल पूछूं, ये क्या है, तो लोग कहेंगे ये एक मेज है, ये किस लिए है, समझे। अब यहाँ कोई कह सकता है ये मेज नहीं है, ये एक तख्ता है, देखें ये एक तख्ता है, लेकिन फिर भी ये एक मेज है। अब देखें कहीं तो इसका दुरुस्त जवाब मौजूद है। और अगर मैं किसी चीज के मुतालिक कोई सवाल पूछूं, तो उसका दुरुस्त जवाब कहीं होना चाहिए। उसके आसपास कोई बात हो सकती है, लेकिन उसका कोई ठीक जवाब भी होना चाहिए जो हर सवाल का सीधा जवाब हो। बस देखें हर एक सवाल जो हमारी जिंदगी में आता है उसका कोई ठीक और सीधा जवाब होना चाहिए। और अब आज हम ये कहते हुए सुनते हैं, आज दुनिया में हमारे बहुत से लोग हैं। एक मिशनरी होते हुए मैंने समुन्दर पार और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा सफर किया है। मेरी बहुत सारे मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों से मुलाकात हुई है, जैसे कि बुद्धा और मुसलमान और सिख और जैन और बाकी मजाहिब के लोग हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, और फिर यहाँ रियासत मुतहदा में हमारे अपने भी हैं और फिर दूसरे गैर ममालिक में भी हैं, और अपने मुख्तलिफ चर्चेज से भी मुलाकात हुई है, जैसे कि हमारे तंजीमी चर्चेज मौजूद हैं। इब्तदा में इब्तदाई रोमन कैथलिक थे और फिर यूनानी और इसी तरह और मुख्तलिफ रसूमात में जन्म ले लिया और फिर आगे बढ़ते हुए तंजीमी जमाने हैं और फिर तकरीबन 900 मुख्तलिफ प्रोटेस्टेंट तंजीमें हैं। अब उनमें से हर एक का बेशक अपना नजरिया है, आप देख सकते हैं, मैं उनको मुजरिम नहीं ठहरा सकता। हर कोई दावा करता है कि वो सच्चा है और उनके पास सच्चाई है, और जो लोग इन चर्चेज से ताल्लुक रखते हैं वो इनका यकीन करते हैं, और लोगों ने इन चर्चेज की तालीम की वजह से अपनी अब्दी मंजिल को दाव पर लगा दिया है, और ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं, और इसकी वजह से तकरीबन 900 से ज्यादा सवालात पैदा हो गए हैं। लिहाजा जब 900 से ज्यादा मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं, तो इनके लिए एक दुरुस्त जवाब भी होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आज रात क्योंकि हम आसमान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने खुदावंद यीशु से मुलाकात करें जिससे हम सब प्यार करते हैं, मैं चाहूँगा कि हम कलामे मुकद्दस में तलाश करें ताकि उस जवाब को दरियाफ्त कर सकें। अब अगर ये बाइबल का सवाल है तो फिर इसका जवाब भी बाइबल ही से होना चाहिए। इसका जवाब आदमियों के झुंड से या किसी खास रफाकत से नहीं होना चाहिए, ना कि किसी मुअल्लिम से और ना ही किसी तंजीम से, بلکہ اس کا جواب براہ راست کلام مقدس سے ہونا چاہیے جو خدا کی ملاقات اور عبادت کی جگہ ہے. اور یقیناً خدا ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں اس کی کوئی ملاقات کی جگہ تو ہے جہاں وہ ملتا ہے. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ استثنا کی کتاب کے آغاز میں موسیٰ کلام کو دوبارہ دہرا رہا تھا. وہ باتیں انہیں بتا رہا تھا کہ کیسے وہ انہیں ایک بڑے اور مضبوط ہاتھ سے چھڑا کر مصر سے نکال کر لایا تھا اور سب سے پہلے انہیں قائم کیا تھا. جب تک وہ مصر میں تھے وہ خدا کے لوگ کہلاتے تھے, لیکن مصر سے نکلنے کے بعد وہ خدا کی کلیسیا کہلائے, کیونکہ کلیسیا جماعت کی جگہ ہے. یا در حقیقت کلیسیا کا مطلب ہے بلائے ہوئے, یعنی وہ لوگ جنہیں بلایا گیا ہے, اور انہیں مصر سے باہر بلایا گیا تھا تاکہ کلیسیا بن جائیں. اب خدا نے انہیں بتایا جب وہ اس سے پہلے کہ وہ ہیکل یا وہ کچھ اور بناتے, میں اپنی عبادت کے لیے ایک جگہ کا چناؤ کروں گا اور میں اپنا نام اس میں رکھوں گا. اور یہی وہ واحد جگہ تھی جہاں خدا کسی سے ملاقات کرتا تھا, اور وہ بھی اپنی مرضی اور اپنے انتخاب کے مطابق ملتا تھا. اس نے اپنے لیے جگہ چنی, اور جہاں اس نے اپنے لیے جگہ چنی اس میں اس نے اپنا نام رکھا. یہاں دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اپنا نام اس جگہ میں رکھے گا جسے اس نے لوگوں کے لیے اپنی عبادت کرنے کے لیے چنا تھا. اب اصل بات یہ ہے, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جگہ کہاں ہے, جبکہ تقریباً 900 سے زیادہ مختلف نظریات موجود ہیں, اور ہم تمام غیر مسیحی مذاہب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اب صرف مسیحی دین کی بات کرتے ہیں. حالانکہ مجھے غیر قوم سے بھی ہمدردی ہے, ورنہ میں یقیناً ان کے پاس جا کر ان سے بات نہ کرتا, لیکن وہ غلط ہیں. مسیحت ہی واحد وہ دین ہے جو سچا ہے, فقط مسیحت ہے. اور میں اسے ٹھیک اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں کرسچن ہوں, بلکہ میں ایمان رکھتا ہوں یہ سچا دین ہے. بس یہی وہ دین ہے جو ٹھیک ہے. میں اس قبر پر جا چکا ہوں جہاں سفید گھوڑا ہر 4 گھنٹے بعد تبدیل کیا جاتا ہے, جہاں محمد ایک عظیم پریسٹ تھا اور مسیح کے بعد ایک لیڈر تھا, وہ بظاہر ایک نبی تھا, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کیا تھا, لیکن وہ مکابی بھائیوں کے فوراً بعد آیا تھا. لیکن انہوں نے وہ مر گیا تھا, اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا اور پوری دنیا کو فتح کرے گا. اب تقریباً ہر 4 گھنٹے بعد وہ پہرے دار بدل دیتے ہیں اور اس کی قبر پر ایک سفید گھوڑا رکھتے ہیں. وہ لوگ تقریباً 2000 سال سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ جی اٹھے گا اور دنیا کو فتح کرے گا. لیکن آپ دیکھیں اور بدھا کو دیکھیں, بدھا سینکڑوں سال زندہ رہا اور تقریباً 2300 سال پہلے وہ جاپان کا دیوتا تھا, اور وہ ایک فلسفی تھا کنفوشیس اور باقیوں کی طرح تھا. لیکن یہ سب لوگ بانی اور وغیرہ وغیرہ تھے, یہ سب اپنے فلسفے کے ساتھ مر گئے اور دفن ہوئے اور ابھی تک قبر میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن مسیحت جس کا بانی یسوع مسیح ہے, اس کی قبر آج بھی خالی ہے. وہ واحد ایسا شخص تھا جو کبھی دھرتی پر کھڑا ہوا تھا اور جی اٹھا تھا اور کہا تھا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے زندہ کرنے کا بھی اختیار ہے, اور اس نے ایسا کیا اور وہ آج بھی زندہ ہے. اور ہم جانتے ہیں وہ زندہ ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور خود کو نشان اور معجزات کے وسیلے ثابت کرتا ہے, کیونکہ اس کا اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ کام کرے گا. یہاں تک کہ ایک آگ کے ستون کے وسیلے بیابان میں اس نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی, اور وہی آج ہمارے ساتھ ہے. یہاں تک کہ اس کی تصویر بھی بنائی گئی ہے اور وہ نشان اور معجزات بھی دکھائے گئے ہیں جس کا اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس زمانے میں کرے گا. پورے کلام کو دیکھیں, جس کا اس نے وعدہ کیا تھا وہ آج پورا ہو رہا ہے. اس لیے باقی تمام غیر اقوام اس سے باہر ہیں, یہ مسیحت ہے. اب خدا کے ملنے کی جگہ کے بارے میں تقریباً 900 سے زیادہ سوالات ہیں. وہ میتھوڈس میں ملتا ہے یا وہ بیپٹسٹ میں ملتا ہے, یا وہ یہاں ملتا ہے یا وہ وہاں ملتا ہے یا کہیں اور ملتا ہے. اب یہ سوال یہاں موجود ہے, اس لیے ہر ایک کو اپنی نجات کی تلاش ڈرتے ہوئے اور کامتے ہوئے کرنی چاہیے. لیکن آج رات میں تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں اور کلام سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک جگہ کون سی ہے جہاں خدا ملاقات کرتا ہے اور لوگ اس کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں. اور اگر یہ بات ہے تو پھر یہی وہ مقام ہے جہاں وہ ہمیشہ ملتا رہے گا. اب ہم نے یہ عنوان استثنا سے لیا ہے, یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا کمپاؤنڈ مطلب ہے, یا اس کا مطلب ہے دو قوانین. یونانی لفظ استثنا کا مطلب ہے دو مختلف قوانین, اور خدا کے پاس یہی دو مختلف قوانین ہیں, اور ان میں سے ایک موت کا قانون ہے اور دوسرا زندگی کا قانون ہے. خدا کے پاس دو قوانین ہیں, اس کی پیروی کرنا اور اس کی خدمت کرنا اور اس کی عبادت کرنا زندگی ہے, اور اسے رد کرنا मौत है। खुदा के पास दो कवानीन हैं। अब उन कवानीन में से एक ये था जो दुनिया के सामने कोई सीना पर जाहिर किया गया था। खुदा ने मूसा और इसराइल को शरीयत दी। वो शरीयत उनकी कोई मदद ना कर पाई, बल्कि उस शरीयत में बस ये बताया कि वो गुनाहगार हैं। उस वक्त तक वो नहीं जानते थे कि गुनाह क्या है, जब तक उनके पास कोई कानून नहीं था। और बगैर सजा के कोई कानून नहीं होता। एक कानून कानून नहीं है अगर उसमें सजा नहीं है, और इसलिए कानून के खिलाफ चलना गुनाह है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए देखें, जब तक खुदा ने कोई शरीयत नहीं दी थी तो उनके किसी गुनाह को हिसाब में भी नहीं लाया गया था। अगर यहाँ कोई कानून नहीं है कि आप 20 मील फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा नहीं चला सकते हैं, तो फिर आप 20 मील फी घंटा से ज्यादा जा सकते हैं। लेकिन जब कोई कानून कहता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, तो इसके पीछे एक कानून और जुर्माना मौजूद होता है। अब मौत या मौत का कानून मौजूद है, क्योंकि कोई सीना पर अहकामात दिए गए थे और इंसान को बताया गया था कि वो एक गुनाहगार है, और खुदा के कानून की मुखालफत करना इंसान की मौत है। लेकिन कानून में निजात नहीं है। देखें, वो सिर्फ एक पुलिस वाले की मानी था जो आपको जेल में डाल सकता था, लेकिन आपको वहाँ से निकालने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन फिर उसने एक और कानून दिया जो कोई कलवरी पर दिया गया था, जहाँ गुनाह यीशु मसीह के खाते में डाल दिया गया और वहाँ जुर्माना अदा कर दिया गया, और न के शरीयत के वसीले बल्कि फजल के वसीले आपको निजात मिली है। खुदा के फजल के वसीले उस पेशगी इल्म और अजली मकसद के मुताबिक जो खुदा को आपके वजूद के मुतालिक पहले से था। अब हम इन दो कवानीन को देखते हैं। अस्तिष्णा दो कवानीन के बारे में बताती है। दो कवानीन थे, एक मौत का कानून था और दूसरा जिंदगी का कानून था। इसी तरह लोगों को दो अहद भी दिए गए, हम उन पर आज सुबह बात करने जा रहे हैं। उनमें से एक आदम को शर्त के साथ दिया गया था, तुमने ये करना है और ये नहीं करना है, लेकिन इस कानून को तोड़ दिया गया आदम, बल्कि हवा ने इसे बागे अदन में तोड़ दिया था। फिर खुदा ने दूसरा अहद बांधा और इब्राहिम को दिया, और वो कानून गैर मशरूत था। वो ऐसा नहीं था तुमने क्या किया है और तुम क्या करोगे, उसने कहा मैंने ये पहले ही कर दिया है। ये फजल है, ये जिंदगी का कानून है। खुदा ने इब्राहिम और उसके बाद उसकी नस्ल के लिए ये काम कर दिया था। ये इब्राहिम की सारी नस्ल के लिए था। जैसे बाइबल कहती है सारा इसराइल निजात पाएगा, लेकिन इसका मतलब यहूदी नहीं है। जैसे पालूस ने कहा है, इसराइल जाहिरी भी है और इसराइल बातनी भी है। जाहिरी जैसे हमने एक रात बताया था, ये जिनसी ख्वाहिश के वसीले इज़हाक की नस्ल है, लेकिन खुदा के कानून के वसीले मसीह है, जो कि इब्राहिम की शाही नस्ल है, और फजल के वसीले सारा इसराइल निजात पाएगा। ये बात है, वो सब जो मसीह में हैं, बचाए गए हैं, सब ये खुदा का दूसरा अहद है। लेकिन ये सब बातें मसीह की पेशनगोई कर रही थी। अब दूसरी अहद पर गौर करें, यहाँ अस्तिष्णा 16 की दूसरी अहद पर तवज्जो दें, उस जगह इबादत करना जिसे मैंने चुना है। अब खुदा की इबादत तो आपने करनी है, और उसने कहा है उस जगह करना जो मैंने चुनी है, ना कि किसी और ने चुनी है, बल्कि जो जगह मैंने चुनी है। अब अगर खुदा किसी जगह को चुनता है, तो फिर हमें तलाश करना चाहिए वो कहाँ है, और उसने उसके बारे में क्या कहा है, और वो कहाँ है। मैं उसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यकीनन उसकी इबादत करना चाहता हूँ। हम सब आज रात यहाँ उसकी इबादत करने आए हैं। हम सब आज रात यहाँ बैठे हुए हैं, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, यहोवा विटनेस, क्रिश्चियन साइंस वाले और बाकी सब हैं, और हम सब उसकी तलाश कर रहे हैं। हम सच्चाई को जानना चाहते हैं। बाइबल फरमाती है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। कोई शख्स ये नहीं जान सकता कि आप क्या कर रहे हैं। आप उस वक्त तक कोई काम करना नहीं जानते जब तक आपको उसके करने का तरीका मालूम न हो, बल्कि आप ये भी नहीं जानते कि क्या करना है जब तक आपको ये मालूम न हो उसे कैसे करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये बात हम पर जाहिर करती है कि खुदा ने अपने इबादत करने वालों के लिए एक मखसूस जगह मुकरर की है, जहां वो उनसे मुलाकात करता है। और फक एक ही जगह है जहां खुदा अपने इबादत करने वालों से मुलाकात करता है। अब देखें, उसने एक जगह अपने इबादत करने वालों के लिए चुनी है, और उसका दावा है वो अपना नाम उसमें रखेगा। अब आए उस जगह की तलाश करते हैं। हम कलाम से देखते हैं वो जगह कहाँ है। यकीनन खुदा ने कहा है वो अपना नाम उसमें रखेगा, जो जगह उसने अपने लोगों से मिलने के लिए चुनी है और उनके साथ इबादत के लिए, बल्कि वो उसकी इबादत करेंगे। वो जगह बाइबल में کہیں تو موجود ہے، کیونکہ وہ تمام زمانوں کے لیے تھی، اور وہ لا تبدیل عظیم خدا بدل نہیں سکتا۔ انسان بدلتا ہے، لیکن آپ اپنی زندگی خدا کی فرمودہ بات پر رکھ سکتے ہیں جو کسی بھی وقت اس نے کہی ہو، کیونکہ وہ سچائی ہے، وہ سچی ہے۔ دیکھیں، خود ایک چیز ہے جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں، اور وہ بائبل ہے، کیونکہ انسان کا کلام ناکام ہو جائے گا، لیکن خدا سب سے بڑا ہے۔ اس سال مجھے گزرے سال سے زیادہ جاننا چاہیے، اسی طرح آپ کو بھی ہر دن جاننا چاہیے۔ ہم محدود ہیں، اسی لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں، لیکن خدا لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے، اور لامحدود ہوتے ہوئے اس کے علم میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آغاز ہی سے کامل ہے، اس کا ہر ایک فیصلہ بالکل درست ہے، اور جس طرح کا عمل خدا نے ایک بار کیا، اسی طرح کا عمل ہمیشہ کرے گا، ورنہ جو عمل اس نے پہلی بار کیا وہ غلط تھا۔ اگر کوئی انسان کبھی خدا کے پاس نجات کے لیے آیا ہے، اور جس بنیاد پر اس سے پہلی بار قبول کیا گیا ہے، اسی بنیاد پر اسے ہر بار قبول کیا جانا چاہیے، یہ درست ہے۔ اگر کوئی انسان خدا کے پاس الہی شفا کے لیے آیا ہے، اور خدا نے اسے ایک خاص بنیاد پر قبول کیا ہے، تو جب اگلا انسان آئے گا تو اسے اسی طریقے سے قبول کرنا پڑے گا، ورنہ پہلا طریقہ جو پہلے انسان کے لیے اپنایا گیا وہ غلط ہے۔ خدا نے ایک بنیاد رکھی ہے جس پر وہ انسان سے ملاقات کرتا ہے، اس نے ایک بنیاد بنائی ہے کہ وہ کیا کرے گا اور وہ کیسے کرے گا، اور اس کا آغاز باغ عدن میں لہو سے لت پت برے کی قربانی کے ساتھ ہوا تھا۔ خدا نے کبھی بھی کسی وقت بھی اسے بدلا نہیں ہے، اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ انسان کو کیسے بچائے گا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ انسان کو اس بارے میں تعلیم دی جائے، ہم نے اسے سکول دینے کی کوشش کی ہے، ہم نے اسے علم دینے کی کوشش کی ہے، اسے منظم کرنے کی کوشش کی ہے، اور باقی سب کام کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ انہیں اس میں لائیں، انہیں اس میں شامل کریں، انہیں بپتسمہ دیں، اور ہر ایک دوسرے طریقے سے اور خطوط کے وسیلے انہیں اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ویسے ہی رہتے ہیں۔ خدا ایک انسان سے برے کے بہائے گئے لہو کے نیچے ملتا ہے۔ آغاز میں خدا کا طریقہ لہو تھا، اور آج رات بھی خدا کا طریقہ لہو ہے۔ توبہ کرنا اور باقی کام کرنا سب اچھے ہیں، لیکن نجات صرف لہو کے وسیلے آتی ہے۔ لہو وہ وسیلہ ہے جو خدا نے انسان کو بچانے کے لیے چنا ہے، اور وہ اسے بدل نہیں سکتا۔ ایوب کے پاس بھی یہی چیز تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ راست باز ہے، کیونکہ اس نے وہ قربانی پیش کی تھی جو خدا نے اس سے طلب کی تھی۔ اب آئے ہم اس کی تلاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ جگہ کون سی ہے اور کس جگہ اس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے۔ ہم اس بات کو تلاش کرنے جا رہے ہیں کہ اس نے اپنا نام کہاں رکھا ہوا ہے، پھر ہم جان سکتے ہیں کہ خدا کا کیا نام ہے اور اس نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے۔ پھر جیسے ہی ہم اسے حاصل کر لیں گے تو ہمیں وہ عبادت کی جگہ مل جائے گی۔ بے شک یہ ساری چیزیں آنے والی چیزوں کا عکس تھی، ساری شریعت ان چیزوں کا پیشگی نمونہ اور سایہ تھی جو بعد میں آنے والی تھی۔ بالکل ویسے ہی جیسے چاند سورج کا عکس ہے، یہ سورج کی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے، بالکل ایسے ہی کلیسیا خدا کے ایس او این کی غیر موجودگی میں کام کرتی ہے۔ بیٹے کی عدم موجودگی میں چھوٹی روشنی یعنی چرچ اور ایماندار خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور بیٹے کی غیر موجودگی میں روشنی دیتے ہیں، لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہے پھر آپ چاند کو مزید نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ غروب ہو جاتا ہے، اسے اپنی روشنی کی مزید ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ ثانوی روشنی لیتا ہے جب وہ سورج سے دور ہوتا ہے۔ اب جیسے شوہر اور بیوی ہیں، سورج اور چاند ہیں، کلیسیا اور مسیح ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں مسیح کا عکس ہیں، ہر ایک قربانی، عید اور پرانے عہد نامے کی ساری چیزیں مسیح کا سایہ تھی، بالکل ویسے ہی جیسے سایہ فرش پر پڑتا ہے۔ اب یہاں ہمیں عبادت کی صحیح جگہ کو تلاش کرنا ہوگا۔ اب پرانے عہد نامے میں جائیں گے جہاں یہ بات کہی گئی تھی، اور دیکھیں گے یہ باتیں کیا تھی۔ اب جب فرش پر ایک سایہ پڑتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرد ہے، عورت ہے، یا کوئی جانور ہے، یا جو کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ فرش پر اپنا سایہ ڈال رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، جبکہ سایہ اصل حقیقت کا عکس ہوتا ہے، اور کوئی عکس یا سایہ اصل حقیقت کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ اس لیے جب مثبت منفی کے قریب آ جاتا ہے تو منفی بھی مثبت میں بدل جاتا ہے، منفی اور مثبت ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہی چیز اسے مثبت بنا دیتی ہے۔ اور دیکھیں یہ ساری پرانی باتیں ہیں، اور بائبل کہتی ہے پرانا عہد نامہ آنے والی باتوں کا عکس تھا اور مسیح آنے والی باتوں کا سایہ تھا۔ بس ہم پرانے عہد نامے کی علامات کے وسیلے ये देख सकते हैं वो अपने नाम को रखने के लिए कौन सी जगह चुनता है और आज के लिए अब जैसे एक साया जमीन पर पड़ता है। मैंने कहा एक अक्स एक अलामत होती है, लिहाजा हम जो इबादत गुजार हैं ये देख सकते हैं कि पुराने ऐद के साए नए ऐद के असल मुस्बत में मद्दम हो जाते हैं। अब सारी ईदें सारी छुट्टियाँ सारे टेबर निकल सारी लकड़ियाँ और बाकी सब कुछ जो टेबर निकल में था वो सब मसीह का नमूना था। सारी कुर्बानियाँ सारे कवानीन सब कुछ मसीह का नमूना था। हम यहाँ इस टेबर निकल में बार बार इसको देख चुके हैं। फिर हमने इसके वसीले देखा है हर एक अकीदा चर्च और तंजीम मुकम्मल तौर पर पीछे रह गई है। वैसे भी वो इस दौड़ में यहाँ मंजर पर नहीं है। हर अकीदा हर चर्च हर तंजीम पूरी तरह से बाहर निकल गई है। अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। ऐदनामा अतीक में या बाइबल में कहीं भी कलीसिया के बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया सिवाय बाबल के बुर्ज के जबरी इतिहाद के। यही वही चीज है जो इतिहाद का अक्स दिखाती है, क्योंकि ये काम नमरूद के वसीले हुआ था। वो एक बदकार आदमी था जिसने बाहर जाकर तमाम छोटे ममालिक को एक जगह जमा किया और उस बड़े बुर्ज में शामिल होने के लिए मजबूर किया था। ये एक मजहबी इबादत थी बेशक, लेकिन खुदा के कलाम की इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। बस यही वो जगह है जहां आप तंजीमी मजहब के नमूने को देखते हैं। ये पुराने ऐदनामे में बाबल का बुर्ज है। देखे ये मजहब यकीनन एक मजहब था लेकिन खुदा के कलाम का मजहब नहीं था। खुदा ने किसी भी तंजीम को अपना नाम रखने के लिए नहीं चुना है। अगर ऐसा है तो मैं इसे कलाम में से देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ वो दावा करते हैं उनके पास है लेकिन उनके पास नहीं है। देखें वो अपने नाम को बहुत सारी जगहों में नहीं रख सकता क्योंकि उसने कहा है वो अपना नाम एक जगह पर रखता है और वो वाहिद जगह है। और हमारी हर एक तंजीम ये कहना चाहती है कि वो वाहिद जगह हम हैं, लेकिन ये एक तजाद है। फिर उसने अपना नाम कहाँ रखा और अब वो क्या है, उसका नाम क्या है? पहले हमें नाम को जानना होगा। खुदा के नाम को तलाश करें, इससे पहले हम उस जगह को तलाश करें जहां वो इसे रखता है। अब हम देखते हैं उसके बहुत सारे अलकाब हैं जिनसे उसे पुकारा जाता है। उसे बाप कहा गया, ये एक लकब है, और उसे बेटा कहा गया, ये भी एक लकब है। उसे रूहुल कुद्दस कहा गया, ये भी एक लकब है। उसे शाहरून का गुलाब कहा गया, ये भी एक लकब है। वादी का सोसन कहा गया, एक लकब है। सुबह का सितारा कहा गया, यहोवा यरी, यहोवा राफा कहा गया। सात मुख्तलिफ कंपाउंड मखलसी के नाम हैं, और ये सब अलकाब थे। इनमें से कोई भी नाम नहीं था, लेकिन उसका एक नाम है। जब वो मूसा से मिला उस वक्त तक उसका कोई नाम नहीं था, और उसने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। और जब हम जमीन पर यीशु को देखते हैं जो कि अब्रानियों के छठे बाब में बात कर रहा है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुकद्दस यूहन्ना का छठा बाब है, उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। उन्होंने कहा देख तू एक इंसान है और तेरी उम्र 50 से ज्यादा नहीं है, और तू कहता है तूने इब्राहिम को देखा है? उसने कहा इब्राहिम से पहले मैं हूँ, और मैं हूँ वो अकेला था जलती हुई जाड़ी में। ये आग का सुकून था जो मूसा के जमाने में जलती जाड़ी में मौजूद था। देखें मैं जो हूँ सो हूँ। और अब हम देखते हैं यीशु ने ये भी कहा मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। फिर बाप का नाम यीशु होना चाहिए, ये दुरुस्त है। बाप का नाम यीशु है क्योंकि यीशु ने ये कहा है मैं अपने बाप का नाम लेकर आया हूँ, मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। तो फिर उसका नाम यीशु था, और जिब्राइल ने उसे यीशु कहा, नबियों ने उसे यीशु कहा, और यकीनन वो यीशु ही था। उसकी पैदाइश से पहले मुकद्दस नबी ने उसे इमैनुअल के नाम से पुकारा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। फिर दुनिया के गुनाहों को मिटाने के लिए खुदा जिस्म में जाहिर हुआ, और इस काम के लिए उसे यीशु नाम बख्शा गया। बस यीशु नाम है, और इस नाम को एक आदमी में रखा गया, ना कलीसिया में, ना तंजीम में, ना अकीदे में, बल्कि एक आदमी में। उसने अपना नाम यीशु मसीह में रखने का इंतखाब किया। अब हम देखते हैं फिर वो खुदा की इबादत की जगह बन गया जहां आप उसकी इबादत कर सकते हैं। इससे पहले कि वो पैदा होता उसे यस्सु नाम से पुकारा गया। ये बड़ा खास नाम था जो जब्राइल के वसीले उसकी माँ को दिया गया था कि उसका नाम यस्सु खुदा का बेटा रखा जाएगा, और यही कुछ वो था। फिर हमें ये दिया गया है, यही अकेला है और ये फक्त उसी अकेले के लिए है। ये खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह है, खुदा की चुनी हुई जगह है ताकि खुदा इंसान से मुलाकात करे। ये किसी कलीसिया में नहीं है, ये किसी तंजीम में नहीं है, ये किसी अकीदे में नहीं है, बल्कि ये मसीह में है। बस यही वो जगह है जहाँ खुदा इंसान से मुलाकात करेगा और इंसान खुदा की इबादत मसीह में कर सकता है। फक्त यही वो जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप मेथोडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट हैं, कैथलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं या आप जो कोई भी हैं। बस एक ही जगह है जहाँ आप ठीक तरीके से खुदा की इबादत कर सकते हैं, वो मसीह में है। रोमियो 8:1 में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं। वो जिस्म की पैरवी नहीं करते बल्कि रूह की पैरवी में चलते हैं। ये अंजील है। हमारा अकीदों में इख्तलाफ हो सकता है, हमारा इंसानी नजरियात में इख्तलाफ हो सकता है। आप एक मेथोडिस्ट चर्च में जा सकते हैं, आप एक मेथोडिस्ट बन सकते हैं, एक बैप्टिस्ट बन सकता है, एक कैथलिक बन सकता है। लेकिन जब आप एक बार मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं तो उसके बदन का हिस्सा बन जाते हैं। फिर कोई इख्तलाफ नहीं रहता, फिर तकसीम की दीवारें नीचे गिर जाती हैं और आप आजाद हो जाते हैं क्योंकि आप मसीह यीशु में शामिल हो जाते हैं। और जब आप मसीह यीशु में शामिल हो जाते हैं फिर आप खुदा की इबादत रूह और सच्चाई से करते हैं। ये खुदा का आपके लिए मंसूबा है ताकि आप उसकी इबादत मसीह यीशु में करें। अब कोई तंजीमी चर्च ये दावा नहीं कर सकता, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता। क्या आप में ऐसा दावा करने की हिम्मत है? इस तरह की बात तो सिर्फ मुखालफ मसीह की रूह कर सकती है जो मसीह से दूर ले जाती है ताकि उसे दूर ले जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते। फक्त मसीह वो जगह है जहाँ खुदा इबादत करने वालों को मिलता है। वो आज कहते हैं, मुझे लोगों ने बताया था, ज्यादा अरसा नहीं हुआ, मुझे एक आदमी ने ब्यूमन टेक्सास से फोन किया था। उसने कहा, मिस्टर ब्रैनम, अगर आपका नाम हमारे चर्च के रजिस्टर में नहीं है तो आप आसमान पर नहीं जा सकते हैं। क्या आप कभी ऐसा सोचेंगे? आपको इस तरह की बात का यकीन नहीं करना चाहिए। लोग सोचते हैं आपको फलां चर्च से ताल्लुक रखना पड़ेगा वरना आप आसमान पर नहीं जा सकते हैं। ये गलत है, ऐसी सोच मुखालफ मसीह की है। मैं ये कहता हूँ, अगर आप ऐसी रूह का यकीन करते हैं तो आप खोए हुए हैं। ये एक अच्छा निशान है कि आप खोए हुए हैं क्योंकि ये बात आपको खुदा के काम से दूर ले जा रही है। खुदा ने कभी भी अपना नाम किसी चर्च में नहीं रखा, उसने इसे अपने बेटे में रखा है जो कि यीशु मसीह है, जहाँ वो और उसका बेटा एक हो जाते हैं। यही हकीकी इबादत की जगह है। कोई और बुनियाद नहीं रखी गई, कोई और चट्टान नहीं है। मैं मजबूत चट्टान मसीह पर खड़ा हूँ, बाकी सारी जमीन दस्ती हुई रेत है। तंजीमें चूर चूर होकर गिर जाएंगी, कौमें मिट जाएंगी, लेकिन वो सदा कायम रहेगा। कोई और जगह नहीं है जो इंसान खुदा की इबादत के लिए हासिल कर सके। मसीह यीशु के अलावा कोई और जगह नहीं है जहां खुदा इंसान को वापस जवाब देता है। बस यही वो मकाम है, यही वो जगह है जहां खुदा ने अपना नाम रखा हुआ है, और यही वो मकाम है जहां खुदा एक इबादत करने वाले से मिलता है। किसी और चीज पर ईमान रखने से आप खो जाते हैं। गौर करें, 7 यहूदी ईदें ठीक इसी मकाम में रखी गई थी। उन्होंने कभी भी मेथोडिस्ट के लिए एक ईद नहीं रखी और बैप्टिस्ट के लिए एक ईद नहीं रखी, या एक प्रेस्बिटेरियन के लिए, या एक कैथलिक के लिए, या एक प्रोटेस्टेंट के लिए। तमाम सातों ईदें एक मकाम में मनाई जाती थी। यहाँ ये एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है। हमने 7 कलीसिया जमाने देखे हैं जिससे ये साबित हुआ है कि खुदा ने 7 कलीसिया जमाने अपने कलाम में रखे हुए हैं, क्योंकि हर एक कलीसिया जमाने ने कलाम के एक हिस्से को जाहिर किया, और जब कभी उन्होंने उस हिस्से को जाहिर किया तो उन्होंने नूर को देखा। बिल्कुल वैसे ही जैसे सबसे पहले लोगों ने यीशु नाम के बपतिस्मे को दरियाफ्त किया था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसमें से एक तंजीम बना ली और वो ठीक वहीं मर गए। फिर खुदा ठीक किसी और की तरफ आगे बढ़ गया क्योंकि वो किसी अकीदे और किसी रस्म में नहीं ठहरता। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, खुदा में कोई मिलावट नहीं है। खुदा का कलाम पाक और खालिस है। मसीह खुदा की इबादत का मरकज है, वो खुदा है तमाम सातों ईदें किसी एक जगह पर मुनक्कद होनी चाहिए। आप इन ईदों को किसी और जगह नहीं मना सकते हैं, लेकिन इन सातों को एक साल की सातों ईदों को एक ही जगह पर मनाया जाना चाहिए। और सात कलीसिया जमानों को एक ही मकाम से होकर गुजरना था, और वो एक मकाम मसीह था जो तमाम सात कलीसिया जमानों में बोल रहा था। ये बिल्कुल ठीक है, सात कलीसिया जमाने नमूना है, लेकिन उन्होंने इनमें से तंजीमें बना ली हैं। अब आए एक और नमूना देखते हैं, जबकि हम यहाँ हैं। ये नमूना फसा का है जिसमें यीशु को पेश किया गया है। हम यहाँ मौत के जरिए खून की कुर्बानी को देखते हैं। खून की कुर्बानी वो थी जिसने मसीह की पेशनगोई की थी। क्या कोई तंजीम खून बहा सकती है? क्या आप चर्च के खून बहाने या तंजीम के खून बहाने का तस्वीर कर सकते हैं? यकीनन नहीं। ये एक जिंदगी से खून बहाने का अमल है, और यहाँ इस जिंदगी में यीशु बरे के रूप में सामने आता है। और बरा मसीह का एक नमूना था जो मसीह की पेशगी अतला दे रहा था, क्योंकि वो खुदा का बर्रा था जिसका तारुफ यूहन्ना ने करवाया था, जिसने दुनिया के गुनाह उठा लिए थे। हम यहाँ क्रूज के बारहवें बाप में यीशु की आमद के नजारे को देखते हैं। गौर करें, यही वो जगह है जहाँ मौत हमला नहीं कर सकती है। इससे पहले मौत देश पर हमला करती, वहाँ एक खास मकाम था, सब इस मौत के मोहताज थे, बस एक ही जगह थी। देखें, इसका ये मतलब नहीं कि एक घर था, बल्कि वहाँ एक मकाम था जहाँ बरे को ज़बह किया गया था, और जहाँ बरे का लहू था वहाँ मौत का फरिश्ता हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एक जगह थी जिसमें खुदा ने अपना नाम रखा हुआ था, और उस बरे का नाम आगाज ही में रखा गया था, और वो एक बरा था। गौर करें, और ये एक जगह थी जहाँ मौत हमला नहीं कर सकती थी, और अब आज भी ऐसा ही है। यहाँ एक जगह है जहाँ रूहानी मौत हमला नहीं कर सकती है, और वो कलाम है। मौत कलाम पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि वो जिंदा खुदा का कलाम है। लेकिन जब आप इसके साथ इंसानी अकीदे रखते हैं, तो कलाम खुद बखुद बाहर निकल जाता है, जैसे तेल पानी से अलग हो जाएगा। आप इसे मिक्स नहीं कर सकते। इसलिए आप देखें, जब इंसानी अकीदा किसी तंजीम में आता है, तो सब लोग उस अकीदे के पीछे चले जाते हैं, और कलाम का असर खत्म हो जाता है, और वो किसी और के पास चला जाता है, और उसे बढ़ाता रहता है, रफ्तार तेज कर देता है, और फिर रास्ताबाजी से निकलकर तकदीस में आ जाता है, और फिर पाक रूके बपतिस्मे में, और फिर सीधा बीज में शामिल हो जाता है। क्या आप उस रास्ते को देखते हैं जिस पर खुदा ले जाता है, तमाम जमानों से होते हुए ठीक उस मकाम तक लाता है, अपने नाम तक लाता है, क्योंकि वो कलाम है। ध्यान दें, वो मर नहीं सकता। जिंदगी का कलाम कभी मर नहीं सकता है। अब गौर करें, ये कितना कामिल है। मौत के फरिश्ते को मिस्र के दानिश्वर लोगों पर हमला करने से मना नहीं किया गया था, उनके मुकद्दस मकामात पर हमला करने से रोका नहीं गया था, बड़ी इमारतों और उनके फराउनों से रोका नहीं गया था, और उस देश के काहिनों पर उस फरिश्ते को हमला करने से मना नहीं किया गया था। ये हमला किसी भी इमारत, किसी भी मकाम पर या किसी पर भी हो सकता था, लेकिन जहाँ बरा था वहाँ ये हमला नहीं हो सकता था। मौत उस जगह पर नहीं आ सकती जो खुदा की मुहैया करदा जगह है, और वो जगह बरे में है। गौर करें, यहाँ तक कि उसे इसराइल और उसके अब्रानी काहिनों पर हमला करने से भी नहीं रोका गया था, और उनकी किसी तंजीम पर हमला करने से नहीं रोका गया था। इसीलिए सबको खुदा की चुनी हुई और मुहैया की हुई जगह पर होना चाहिए था, वरना मौत हमला कर सकती थी। कलीसिया, आप जहाँ कहीं से भी हैं या जिससे भी ताल्लुक रखते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ एक बात आपको याद रखनी चाहिए, आपको मसीह में होना चाहिए, वरना आपके लिए मौत है। आप मसीह के अलावा जिंदा नहीं रह सकते हैं। हो सकता है एक इमारत होते हुए आपका चर्च अच्छा हो सकता है एक इंसान के साथ आपकी रफाकत अच्छी हो, लेकिन जब आप उस बदन का, लहू का और यीशु मसीह के कलाम का इनकार करते हैं, तो उसी घड़ी आप मर जाते हैं। वो खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह है, यकीनन यही वो जगह है जहाँ उसका नाम है। इसी जगह को उसने अपना नाम रखने के लिए चुना है, कलीसिया में नहीं बल्कि बेटे में, यानी यीशु मसीह में। गौर करें, हिफाजत सिर्फ उसके चुने हुए मकाम में है, उसके बरे में है, और उसके बरे के नाम में है। गौर करें, वो एक नर बरा था, एक नर, ना कि एक नारी, एक कलीसिया नहीं जो नारी है, बल्कि नर का नाम, ना कि नारी का नाम। जहाँ वो लोगों से मिलेगा, वो नारी का नाम नहीं है, बल्कि नर का नाम है, वो एक बड़ा है। अब हम कहते हैं वो चर्च, वो बड़ा ताकतवर चर्च है, उसने ये किया है, उसने वो किया है, उसने तूफानों का मुकाबला किया है। हमारी तादाद काफी बढ़ गई है, हम तादाद में बहुत ज्यादा हैं, हम ताकतवर चर्च हैं। ये कलीसिया बहुत बड़ी चीज है, लेकिन खुदा ने नारी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। उसने कहा नर, नर, और इबादत की जगह बड़ा है, कलीसिया नहीं। नारी का नाम नहीं बल्कि नर का नाम है। उसने नारी का नाम कहीं नहीं रखा बल्कि उसने अपना नाम नर में रखा है। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है, कलाम या काम, देखें, हमें जो कुछ भी करना है वो सब यीशु मसीह के नाम में करना है। अगर हम दुआ करते हैं तो हमें यीशु के नाम में करनी है। अगर कोई अर्ज करनी है तो हमें यीशु के नाम में करनी है। अगर हम चलते हैं तो हमें यीशु के नाम में चलना है। अगर हम बोलते हैं तो हमें यीशु के नाम में बोलना है। और अगर हम बपतिस्मा देते हैं तो हमें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देना है। क्योंकि कलाम या काम जो कुछ भी हम करते हैं हमें वो यीशु मसीह के नाम में करना है। एक मर्तबा एक शख्स ने मुझसे कहा, वो गुफ्तगू कर रहा था, उसने कहा भाई ब्रहनम, मेरी बीवी, मैं नहीं, उसने कहा उस खातून का नाम फलां फलां है, वो शख्स एक खादम है और हो सकता है अब यहीं कहीं बैठा हो, और उसने कहा मेरी बीवी को कहा, उसे मेरा ही नाम मिला है, मैं फर्जी नाम ले रहा हूँ जोन्स, क्योंकि उसका नाम जोन्स नहीं है। उसने कहा अब उसे हर रोज सुबह उठकर झाड़ू लेकर ये नहीं कहना पड़ेगा, अब मैं ये जमीन जोन्स के नाम से साफ करती हूँ, और मैं बर्तन जोन्स के नाम से धोती हूँ, और जोन्स के नाम में कपड़े सिलाई करती हूँ। उसने कहा मेरा ख्याल है कि किसी नाम का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मेरा ईमान है कि ऐसा करना जरूरी है, ये दुरुस्त है। और उसने कहा भाई क्यों, उसे ये कहने की जरूरत नहीं है, वो शुरू ही से जो कुछ भी करती है वो जोन्स के नाम में ही करती है। मैंने कहा लेकिन तुम कभी किसी सड़क पर चलकर उसके पास नहीं गई होगी और कहा होगा आओ जोन्स, उसे पहले एक रस्म के जरिए यानी शादी की तकरीब के जरिए जोन्स बनना पड़ा था। अगर वो ऐसा ना करती तो तुम जना की हालत में जिंदगी गुजार रहे होते। और अगर आपका यीशु मसीह के नाम के अलावा किसी और तरीके से बपतिस्मा हुआ है तो ये एक जना का बपतिस्मा है जो बाइबल में नहीं पाया जाता है। फिर कलाम या काम जो कुछ भी तुम करते हो वो सब यीशु के नाम में करो। इसके बाद जो कुछ भी करो लेकिन पहले तुम्हें उसके नाम में आना जरूरी है। आज रात इस इमारत में बहुत सारी अच्छी खवातीन मौजूद हैं, जो कि अच्छी हैं और वफादार खवातीन हैं, लेकिन इनमें मिसेस विलियम ब्रहनम एक ही है, वही एक है जो मेरे साथ घर जाती है और वही एक मेरी बीवी है। दुनिया में अच्छे लोग हैं, अच्छे चर्चेज हैं, लेकिन मिसेस यीशु मसीह एक ही है और इसी के लिए वो आ रहा है। यही है जिसे उसने अपना नाम दिया है और यही उसकी इबादत की जगह है, उसमें और सिर्फ उसमें। ये सच है। ओ जी जनाब, हमने दरियाफ्त किया है, ये सच है। अब यही वजह है हम कलाम या काम जो कुछ भी करते हैं वो यीशु मसीह के नाम में करते हैं। यीशु मसीह के नाम के अलावा आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले निजात हो। ईमान दूसरा बाप कहता है क्योंकि तुम ये जान लो आसमान के नीचे यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले कोई आदमी निजात पा सके। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं, ये यीशु मसीह का नाम है। बस आसमान का सबसे आला नाम उसे दिया गया है। आसमान का सारा घराना यीशु नाम से नामजद है, बाइबल कहती है। जमीन का सारा घराना यीशु नाम से नामजद है। बस यही खुदा का चुना हुआ नाम है जो उसने यहाँ रखा हुआ है, और यीशु मसीह उसकी इबादत की जगह है। अब हम जानते हैं ऐसा ही है, उसके सिवा और कोई इबादत की जगह नहीं है। आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले आदमी निजात पा सके। ये खुदा का मखलसी देने वाला नाम है। खुदा को यहोवा यरी और यहोवा राफा के नाम से पुकारा गया, और यहोवा यरी है, खुदावन तेरे सारे गुनाहों को माफ करता है। यहोवा राफा, खुदावन तुझे सारी बीमारियों से शिफा देता है। उसके बहुत सारे अलकाब थे लेकिन उसका मखलसी देने वाला एक ही नाम है जो नस्ले इंसानी से ताल्लुक रखता है, और वो नाम यीशु है। यही उसका नाम है जो उसने रखने के लिए चुना है। उसने इसे कहाँ रखा? उसने इसे मसीह में रखा। इसलिए बाकी चर्चेज के नामों और अकीदों पर भरोसा रखना मौत है। अगर आप आसमान पर जाने के लिए मेथोडिस्ट चर्च पर भरोसा कर रहे हैं तो आप खोए हुए हैं। अगर आप पेंटीकोस्टलों पर भरोसा कर रहे हैं कि पेंटीकोस्टल चर्च आपको आसमान पर लेकर जाएगा तो आप खोए हुए हैं। और इसी तरह बैप्टिस्ट, लूथरन, प्रेसबिटेरियन, कैथलिक और बाकी चर्चिज हैं। अगर आप इनके नाम या इनके अलकाब या इनके अकीदों पर भरोसा कर रहे हैं तो आप खोए हुए हैं, क्योंकि आप तो इबादत भी नहीं कर सकते हैं जब तक आप पहले इबादत की जगह पर नहीं आ जाते हैं। आमीन। बस एक जगह है जहां खुदा अपने इबादत करने वाले को मिलता है, और वो वही जगह है जिसे उसने अपना नाम रखने के लिए चुना है। बाकी सब पर भरोसा करने से आप हलाक हो जाएंगे। वो इसी तरह यहाँ एक और यीशु का नमूना है, मैंने हवाले पर निशान लगाया हुआ है और उसकी पेशनगोई यहाँ है। वो बेऐब होना चाहिए, वो मकाम जहाँ वो अपना नाम रखता है उस बरे को बेऐब होना चाहिए। अब किस तंजीम या किस सिस्टम की तरफ आप इशारा कर सकते हैं? कौन सा चर्च है? कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, यहूदी या कोई और है? कौन से तंजीमी निजाम की तरफ आप इशारा कर सकते हैं? कौन बेऐब है? ये सब दागी हैं और रद्द किए हुए हैं। लेकिन एक जगह है, हालेलुया, वो जगह यीशु मसीह है। उसमें कोई ऐब नहीं है, उसमें कोई दाग नहीं है। आप उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। वो सब लोग जो ये कहने की कोशिश करते हैं कि उनकी कलीसिया बेऐब और पाक है, वो अलूदा हैं, कलाम के इनकारी हैं, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, नीम मुर्दा हैं, लोदिकिया के दौर जैसी हालत में हैं, इंसानी अकायद और रसूमात पर कायम हैं और सच्चाई पर कायम नहीं हैं। लेकिन देखें, उसके दुश्मन पिलातुस ने कहा, मैं इसमें कोई ऐब नहीं पाता। उसके अपने दुश्मन ने ये गवाही दी, उसमें कोई ऐब नहीं है, आप उसमें कोई गुनाह नहीं दिखा सकते हैं। उसने अपने जमाने के काहिनों से कहा, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? कौन साबित कर सकता है कि मैं एक गुनाहगार हूँ? मुझे कोई कलीसिया दिखाओ जो कहे उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की है। साफ साफ कहूँ तो मुश्किल से इनमें एक भी नहीं है, बल्कि उनमें शायद ही कोई ऐसी हो जिसने कत्लो गारत ना की हो। देखें, तारीख में सब कुछ मौजूद है, फिर भी अपने आप को कहते हैं, देखें, किसी तंजीम में या किसी इंसानी अकीदे में खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आपके एहसास को मजबू करना नहीं चाहता, लेकिन मैं पैगाम सुनाने का पाबंद हूँ और ये यही पैगाम है। उस गंदगी से बाहर आ जाओ। और अगर मैं आपको बाहर निकलने के लिए कहता हूँ तो फिर मैं आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ? क्या मैं आपको ब्रैनम टैबरनेकल में लेकर जाऊँगा? ये भी बाकी सब की तरह कसूरवार है। लेकिन एक मकाम है जहाँ मैं आपको लेकर जा सकता हूँ, जहाँ आप मौत से बचकर महफूज हो सकते हैं, और वो मकाम यीशु मसीह है, जो खुदा की इबादत की जगह है। यही वो जगह है जिसका मैं आज रात आपको तारीफ करवा रहा हूँ, जहाँ खुदा ने अपना नाम रखा हुआ है। यही वो जगह है जहाँ उसने इंसान के साथ मिलने का वादा किया है, और वो मसीह में इंसान के साथ मिलकर परस्तिश करेगा और इंसान के साथ ज़ियाफ़त करेगा। किसी खेमे में नहीं, ना ही किसी चर्च में, बल्कि मसीह में। वो खुदा का टैबरनेकल है। मसीह वो जगह है जिसमें खुदा खुद आया और उसमें मुजस्सम हो गया। ये मेरा प्यारा बेटा है जिसमें रहकर मैं खुश हूँ। यही वो जगह है जहाँ खुदा ने खेमा लगाया और अपना नाम लेकर यीशु मसीह में रख दिया। बस इस तरह उसका नाम एक शख्स में रखा गया, यानी उसके बेटे यीशु मसीह में, जिसमें वो खुद बस गया, यानी एक टैबरनेकल में। और कदीम यरूशलेम एक नमूना था, कदीम ईदे और कदीम हैकल एक नमूना थे। जब उसमें से धुआं उठने लगा तो उस दिन वो अहद का संदूक अंदर चला गया और ये तय हो गया, और खुदा की आवाज उसमें से सुनाई दी। बस खुदा की आवाज को सुना गया जो उस टैबरनेकल से, यानी यीशु मसीह में से आ रही थी। और पुराना अहद फितरी तौर पर नए अहद का एक नमूना और अक्स था, और जब वो मसीह में आ गया तो उसने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिसमें रहकर मैं खुश हूँ, और मैं एक मकाम चुनूंगा और उसमें मैं अपना नाम रखूंगा, और वहाँ मैं इंसान से मिलूंगा और वहाँ मेरी परस्तिश होगी। खुदा एक जगह को चुनता है, किसी तंजीमी चर्च को नहीं, बल्कि यीशु मसीह को। जी हाँ जनाब, और उसे जरूर बेऐब होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, कोई तंजीम ये दावा नहीं कर सकती। अगर वो ये दावा करते हैं तो वो मुखालफ मसीह है। अब हम यहाँ एक बार फिर उसके अलामती साय को देखते हैं। उस बरे को अलग रखना था। अब ये बात खरूज 12 में मिलती है। अगर आप लिख रहे हैं तो ये खरूज 12:3-6 है। उस बरे को 4 दिन तक वहाँ रखा जाए और परखा जाए, ताकि उसे देखा जाए कि वो अभी तक कुर्बानी के लायक है या नहीं। उसे जरूर लिया जाए और 4 दिन तक बार बार उसे चेक किया जाए ताकि देखा जाए कि वो बेऐब है और देखा जाए उसे कोई बीमारी तो नहीं है और देखा जाए उसमें कोई ऐब तो नहीं है। उसे 4 दिन चेक करना जरूरी था। अब गौर करें, शायद आप में से कुछ सोचें ये तो छोटी सी बात है, 14वें दिन उसे जमा करें, लेकिन आप ये याद रखें वो महीने की 10वीं तारीख को बरा लेते थे और महीने की 14वीं तारीख को उसे जमा करते थे। देखें 4 दिन तक उसे रखते थे। अब खुदा का नाम बर्रा यीशु यरूशलेम में चला गया और फिर वो अपनी मौत, तदफीन और जी उठने के बाद दोबारा जाहिर हुआ। उसे 4 दिन और 4 रातें नकादों के दरमियान रखा गया था। बर्रे की क्या कामिल मिसाल थी। उसे 4 दिन रखा गया और इसी मकाम पर पिलातुस ने कहा, मैं इसमें कोई ऐब नहीं पाता हूँ। उसका एक और अक्स है, उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। ये कामिल नमूना था और वो ऐसा नहीं कर सके थे। कुर्बानी को ज़बह करते वक्त उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जा सकती थी। अगर कोई हड्डी टूट जाती तो वो कुर्बानी काबिले कबूल न होती। और वो मसीह की टांगों की हड्डियों को तोड़ने के लिए हथौड़ा पहले ही निकाल चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा ये तो पहले ही मर चुका है। उन्होंने उसकी पसली को छेदा और पानी और खून बह निकला। अब यहाँ एक और अजीम बात पर गौर करें। मैं इसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो कुर्बानियों यानी नजर की कुर्बानी को भी जाहिर कर रहा था। मुझे याद है उनका एक बाइबल स्कूल था जिसे नबियों का मदरसा कहते थे और ये बिल्कुल एक स्कूल था। और हम देखते हैं एक दिन एलिया उस स्कूल में गया और उन्होंने कहा, हम उन्होंने उसे वहाँ से जाने की दरखास्त की और कहा, जब भी तुम यहाँ आते हो बड़ी अजीब बातें होती हैं, बस हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से दूर ही रहा करो। और वो उसके लिए रात का खाना लेने बाहर चले गए और वो काहिनों या नबियों का ग्रोह बाहर गया ताकि उसके लिए रात का खाना बनाने के लिए मटर लेकर आए। और जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने ये सब कुछ एक बड़े कपड़े में रख दिया। और जब वो वापिस आए तो वो एक जंगली सब्जी थी और वो जहर था और उन्होंने उसे देग के अंदर डाल दिया और देग उबलना शुरू हो गई। और उनमें से किसी ने कहा, हाय इस देग में तो मौत है, अब हम इसे खा नहीं सकते हैं। और एलिया ने कहा, मेरे पास मुट्ठी भर आटा लेकर आओ। उसने आटा लिया और उसे देग में डाल दिया और कहा, खाओ। देग ठीक हो गई थी। वो नजर की कुर्बानी मसीह का अक्स थी। हर दाना यकसा तरीके से तैयार किया जाता था और आटे का हर छोटा जरा एक ही तरह पीसा जाता था ताकि वो नजर की कुर्बानी बन सके। इससे जाहिर होता है कि वो शाफी है, वो बदले में काम करता है, मौत को हटा देता है और उसकी जगह जिंदगी दे देता है दो कवानीन के जरिए। हालेलुया। जिस मकाम पर मौत होती है जब वहाँ मसीह आ जाता है तो जिंदगी आ जाती है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है और जहाँ मौत थी वहाँ जिंदगी आ गई क्योंकि नजर की कुर्बानी मसीह को उसमें डाल दिया गया था। इन अजीम असबाब के लिए ये कितनी जबरदस्त बातें हैं। काश हम इन्हें खोलने के लिए कुछ वक्त लगाते। अब गौर करें, उन अलामत में से एक अलामत भी नाकाम नहीं हुई। साय की एक भी बात कभी गलत साबित नहीं हुई। हर चीज जो बतौरे अलामत बयान की गई थी वो कामिल तौर पर हकीकत में पूरी हुई। वो खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह है और खुदा का नाम उसे बख्शा गया है। वो खुदा की इबादत की जगह है और खुदा का नाम उसे दिया गया है। वो खुदा का कलाम है और वो खुदा का नाम है। वो खुदा का कलाम भी है और खुदा का नाम भी है। वो कलाम था जो जिस्म में जाहिर हुआ था, वो खुदा का कलाम था और खुदा का बर्रा था। वो खुदा का नाम था और खुदा था। वो वही था जो खुदा की चुनी हुई इबादत की वाहिद जगह थी। और खुदा यीशु मसीह के अलावा हर जगह का इनकार करता है। आप उसकी इबादत कहीं और नहीं कर सकते हैं। उसने कहा, वो बेफायदा मेरी इबादत करते हैं क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं। आज हमारे पास रसूमात और इंसानी अकीदे और बाकी सब कुछ है जो हमें सिखाया जाता है कि ये इस तरह और वो इस तरह है। और यीशु ने कहा, राह हक और जिंदगी मैं हूँ और मेरे वसीले के बगैर कोई इंसान खुदा के पास नहीं आ सकता। दूसरे अल्फाज में, भेड़ों के बाड़े का दरवाजा मैं हूँ, मेरे सिवा बाकी सब चोर हैं। बस वही वाहिद रास्ता है, वो दरवाजा है, वो राह हक और जिंदगी है। जो कुछ भी है वाहिद दरवाजा है, वाहिद जगह है, वाहिद इबादत है और वाहिद नाम है। हर एक चीज यीशु मसीह से जुड़ी हुई है। पुराने अहद का सब कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है और नया अहदनामा भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। और कलीसिया उसके कलाम के हकाम के वसीले उसके साथ जुड़ी हुई है। कहीं भी कोई जगह नहीं है, कोई नाम नहीं है जहां खुदा ने कभी इंसान से मिलने का वादा किया हो। वाहिद यीशु मसीह उसकी चुनी हुई इबादत की जगह है। गौर करें, खुदा ने अपने इबादत करने वालों से एक ही जगह पर मिलने का वादा किया है और वो उसकी अपनी चुनी हुई जगह है, हमारी पसंद की नहीं, हमारी सोच के मुताबिक नहीं, लेकिन उसकी सोच और उसके इंतखाब के मुताबिक है। और ये वो जगह होगी जिसे वो चुनेगा और अपना नाम उसमें रखेगा। बस हमें दरियाफ्त करना और जानना चाहिए उसका नाम कहाँ पर है जिसे वो अपने जाती इंतखाब के वसीले चुनता है। अब जिस मकाम को हमने दिखा है उसी में वो अपना नाम रखता है और वो जगह यीशु मसीह है। देखें, कोई और जगह नहीं है और ना ही कोई और नाम है। क्या आप इससे मुतमिन हैं? तो कहें आमीन। अब बात यही है, हमने उस जगह की तलाश कर ली है। मसीह के अलावा कोई भी जगह काबिले कबूल नहीं है। आप तौबा कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप फिर भी इबादत नहीं कर रहे होते, आप माफी मांग रहे होते हैं। पतरस ने कहा पैंतीकोस के दिन जब लोगों ने उन्हें गैर जुबाने बोलते और मोजजात और निशान दिखाते हुए देखा तो उन्होंने ठट्ठा किया, चर्च ने ये किया और कहा ये आदमी ताजा मैं के नशे में है। वो शराबी लोगों की तरह हरकतें कर रहे थे और मुकस्सा मरियम और बाकी सब वो 120 एक साथ जमा थे और वो लोग एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे और गैर जुबानों में बोल रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। लोगों ने कहा ये लोग ताजा मैके नशे में हैं, लेकिन पतरस खड़ा हो गया और कहा मर्दों और भाइयों, ये लोग ताजा मैके नशे में नहीं हैं, अभी तो पहली दिन चढ़ा है, बल्कि ये तो वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी इन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियाँ यानी आग और आग के सतून और धुएं का बादल दिखाऊंगा, पेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। और यूँ होगा जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और कहा ऐ मर्दों और भाइयों हम क्या करें। पतरस ने कहा तुम में से हर एक तौबा करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले अपने गुनाहों की माफी के लिए, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे, क्योंकि ये वादा तुम्हारी आने वाली औलाद के लिए भी है। अब हम इसे देखते हैं, अब हम इसे देखना चाहते हैं, हम कैसे उसमें शामिल हो सकते हैं, हम कैसे इस इबादत की जगह में जा सकते हैं। पहला करंथियों 12 ने इसका फैसला कर दिया है, क्योंकि एक रूह के वसीले, किसी चर्च के वसीले नहीं, किसी अकीदे के वसीले नहीं, किसी पास्टर के वसीले नहीं, किसी बिशप के वसीले नहीं, किसी प्रीस्ट के वसीले नहीं, बल्कि एक रूहुल कुद्दस के वसीले एक बदन में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है और वो यीशु मसीह का बदन है और उस बदन में मौजूद हर नेमत के हकदार हैं। जी हाँ जनाब, शामिल होने से नहीं, अकीदे पढ़ने से नहीं, जोश के वसीले नहीं, ऊपर और नीचे उठने के वसीले नहीं, हाथ मिलाने और बाकी चीजों के वसीले नहीं, बल्कि नई पैदाइश के वसीले हम यीशु मसीह के बदन में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं। आमीन। हम सब एक रूहुल कुद्दस के वसीले एक बदन में शामिल होने का बपतिस्मा पाते हैं। और वो बदन क्या है? इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। हम कैसे उस बदन में रहकर उसके कलाम का इनकार कर सकते हैं या उस चीज को कैसे इसमें रख सकते हैं जो बदन का हिस्सा नहीं है? हम ये कैसे कर सकते हैं? वो खुदा की चुनी हुई जगह है, गौर करें। और जब आप वाकई उसमें बपतिस्मा ले लेते हैं तो उसका असल सबूत ये है कि आप उस पर यानी कलाम पर यकीन करते हैं। आप कैसे उसका हिस्सा बनकर उसका इनकार कर सकते हैं? मैं कैसे अपने हाथ को अपना हाथ मानने से इनकार कर सकता हूँ? अगर वहाँ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर यकीनन मेरे जहन के साथ कोई गड़बड़ है और मैं ये कैसे कर सकता हूँ? और अगर मेरे जहन के साथ कोई मसला है तो मैं अपने हाथ का इनकार करूंगा और अपने पाँव का इनकार करूंगा। उस बिलीवर के साथ कोई रूहानी मसला है जो उसके कलाम की किसी बात का भी इनकार करता है जो खुदा ने कही है और वादा किया है। उस नाम नहाद बिलीवर के साथ कोई रूहानी मसला है, आप उसके एक लफ्ज का भी इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप उसका हिस्सा बन गए हैं। आप उसका हिस्सा हैं क्योंकि आपने उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। बजरिया पाकरू आपको यीशु मसीह के बदन में लाया गया है। क्या खूबसूरत बात है! खुदा की एक खास जगह थी जहां वो इब्राहिम से मिला था और वहीं इब्राहिम ने इबादत की थी पूरे ऐदनामे में, और उसके मौजूदा कलाम की ताबीर आपके लिए खुद उसी के वसीले से की जाएगी। क्या आप इसे समझ गए हैं? जिसका उसने वादा किया था वो इन दिनों में पूरा करेगा जिनमें आप रह रहे हैं। आप खुदा के लिखे हुए खतूत बन जाएंगे। जिन्हें सब लोग पढ़ेंगे, आपके दावे नहीं बल्कि खुदा आपके जरिए जो कुछ करता है वो आपके किसी भी दावे से ज्यादा बुलंद आवाज में बोलेगा। खुदा ने कहा है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे क्योंकि वो आपके वसीले बोलता है। उसने जो कुछ इस जमाने के लिए फरमाया है वो अब होगा। इस जमाने के ईमानदारों को उस पर ईमान रखना चाहिए जिसका वादा उसने आज के लिए किया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्हें बचने के लिए कश्ती में आना पड़ा, निजात पाने के लिए मिस्र से निकलना पड़ा। आज लोगों को बचने के लिए मसीह में आना पड़ेगा, कलाम यानी मैसेज में शामिल होना पड़ेगा क्योंकि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आप इसमें शामिल कैसे होते हैं? बपतिस्मा के वसीले। कौन सा बपतिस्मा? पानी का, बल्कि पाक रूह के बपतिस्मे के वसीले, एक रूह के वसीले। हम सब ने एक बदन में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है और ये उसका मौजूदा कलाम है। वो नहीं करेगा बल्कि आपको इसकी तशरीह करनी नहीं पड़ेगी बल्कि वो आपके वसीले इसकी तफसीर करेगा। जो आप कर रहे हैं इसी काम को उसने करने का वादा किया है। जो कलीसिया उसकी पैरवी करती है वो उसकी मानिंद हो जाएगी, यहाँ तक के लोग खुद पहचान लेंगे। पतरस और यूहन्ना को देखें, जब उनसे उस खूबसूरत दरवाजे पर उस आदमी की शिफा के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, उन्होंने जान लिया, उन काहिनों ने ये महसूस कर लिया कि ये दोनों अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, लेकिन उन्होंने गौर किया कि वो यीशु के साथ रहे थे। कैसे? क्या? क्योंकि वो वही काम कर रहे थे जो उसने किए थे। उसे अपने बाप का बिजनेस करना था और आज भी उसी तरह होना चाहिए। अब याद रखें, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है क्योंकि खुदा उसी में मुलाकात करता है और वही वाहिद जगह है और वही वो जगह है जिसे उसने अपना नाम रखने के लिए चुना है, यीशु में। यीशु खुदा का नाम है और याद रखें, बाप बेटा पाक रूह यीशु मसीह के नाम के अलकाब हैं। देखे मती ने कहा, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। आज इसकी कितनी गलत तफसीर की जाती है और कहते हैं बाप के नाम में, बेटे के नाम में और रूह कुदस के नाम में, जबकि ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ये नाम में है, वाहिद है। बाप बेटे और रूह कुदस का नाम वाहिद है। बाप कोई नाम नहीं है, बेटा कोई नाम नहीं है और रूह कुदस कोई नाम नहीं है, ये अलकाब हैं। 10 दिन बाद पतरस खड़ा हुआ और कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तो फिर क्या उसने वो किया जो उसे करने के लिए नहीं कहा गया था? बल्कि उसने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। बाप बेटे और रूह कुदस का नाम खुदावंद यीशु मसीह है। नए ऐदनामे में हर एक शख्स को खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया गया है। बाइबल में कभी भी किसी एक शख्स को भी बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा नहीं दिया गया। ये कभी भी वजूद में नहीं आया था जब तक नासिया का अकीदा नासी रोम में नाफज नहीं किया गया था। ये कैथोलिक चर्च का एक हुक्म था जिसकी बुनियाद कैटेकिज्म में मौजूद है और इसकी तस्दीक की गई है। मैंने इसे देखा है, ये दुरुस्त है, फैक्ट्स ऑफ आर फेथ और वगैरह वगैरह में ये मौजूद है और हकीकत में ये एक रोमन कैथोलिक अकीदा है। वो कहेंगे बेशक ये बाइबल में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं अगर वो चाहें तो उनके पास कलाम में तब्दीली करने का इख्तियार है क्योंकि उनके पास पोप है, मैं अलग हूँ। यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है और जो कोई इस बाइबल में से एक लफ्ज भी निकालेगा, यीशु ने कहा है, या एक लफ्ज इसमें डालेगा उसका हिस्सा किताबे हयात से निकाल दिया जाएगा। एक लफ्ज, ना कि एक जुमला या एक पैराग्राफ, बल्कि एक लफ्ज। जो कोई एक लफ्ज निकालेगा, इब्तदा में खुदा ने अपने लोगों को कलाम के वसीले महफूज किया था। एक लफ्ज की गलत ताबीर करने की वजह से हर मौत, हर दिल का दर्द और हर गम का आगाज हो गया। हवा ने एक जुमले को नहीं तोड़ा बल्कि एक लफ्ज को तोड़ा और यीशु किताब के वस्त में आया जबकि वो किताब का आगाज था। जब यीशु किताब के वस्त में आया तो उसने क्या कहा? ये लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और फिर आखिरी किताब में मुकाशवा के 22 बाब की 18वीं आयत में कहता है, ये बाइबल का आखिरी हिस्सा है, यहाँ यीशु खुद कह रहा है, मैं गवाह हूँ अगर कोई इंसान इस किताब में से एक लफ्ज निकाल डाले या इस किताब में एक लफ्ज शामिल करे तो उसका हिस्सा किताबे हयात से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो झूठा नबी है और लोगों को गलत समझाता है और ऐसा करने की वजह से लोगों का खून उसके हाथों पर होगा। हमें उस इबादत की जगह को कायम रखना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह कलाम है जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। ये दुरुस्त है, याद रखें, इबादत में मुलाकात की कोई और जगह नहीं है, कोई और मकाम नहीं है जिसे खुदा ने चुना है। वहाँ पीछे बहुत पहले यूहन्ना पुराने और नए ऐदनामे के जुड़ने के दरमियान खड़ा हुआ था। अब बड़े गौर से सुने, पूरा ध्यान दें। यूहन्ना एक अजीम उकाब था जो एक दिन जंगल से उड़ता हुआ आया। उसने अपने बड़े पंख फैला दिए और यर्दन के किनारे आकर बैठ गया। एक अजीम उकाब नबी था जिसने पुराने और नए ऐदनामे के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया और उसने उन्हें दाएं और बाएं से बुलाया। वो तौबा के दिन का ऐलान कर रहा था और वहाँ सदूकी और फरीसी बाहर निकल कर आए। उसने कहा, तुम अपने दिल में ये कहना शुरू ना करोगे हमारा बाप इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ इब्राहिम के लिए खुदा इन पत्थरों से औलाद पैदा करने पर कादिर है। ओ मेरे खुदाया, जब उसने अंजील की मुनादी शुरू की और कहा, वो तुम्हारे दरमियान खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, मैंने अभी तक उसको नहीं पहचाना, लेकिन जब वो आएगा तो मैं उसे पहचान जाऊंगा, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ, लेकिन वो तुम्हें आग और रूह कुदस का बपतिस्मा देगा और उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा, मगर भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। वो अजीम बशारती उकाब वहाँ बैठा हुआ था और जैसे ही उसने अपनी बड़ी खतरनाक आवाज से पुकारा और फिलिप बाहर आ गया, या हेरोदिस बाहर आ गया, और वो उस वक्त का बादशाह था और ऐलान हो गया उसने अपने भाई की बीवी से शादी की है। और क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो बड़ा बशारती उकाब वहाँ बैठा हो और अपने मुंह को बंद रखे। उनमें से कुछ ने कहा, यूहन्ना तू इस वक्त शादी और तलाक पर मुनादी ना कर, क्योंकि हेरोदिस यहाँ बैठा हुआ है। वो ठीक वहाँ चल कर गया और उसके मुंह पर कहा, इस औरत को रखना तेरे लिए रवा नहीं है। ठीक है, देखें वो क्या था, वो जंगल से आया हुआ एक उकाब था। उसने किसी तंजीम या किसी इंसान के डर और धमकी के नीचे तरबियत नहीं पाई थी, बल्कि उसने कादरे मुतली खुदा की कुव्वत के नीचे तरबियत पाई थी और जानता था वहाँ क्या होगा। वो मसीहा की शनाख्त को जानता था। हालेलुया लफ्ज का मतलब है हमारे खुदा की तारीफ हो। खौफ ना खाएं, मैंने अभी तक किसी को मजरू नहीं किया, मैं जज्बाती नहीं हूँ, मैं ठीक तरह जानता हूँ मैं कहाँ हूँ। हो जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि वो बड़ा उकाब उठकर आता है और वहाँ नीचे बैठ जाता है, वो कहता है जब वो आएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। एक दिन वो वहाँ खड़ा हुआ मुनादी कर रहा था और काहिन वहाँ से गुजर रहे थे। कहा, तुम्हारा क्या मतलब है, एक दिन हर रोज वाली कुर्बानी खत्म हो जाएगी, और क्या हमारी ये बड़ी हैकल जिसे हमने बनाया है और हमारे ये सब काम और हमारी ये बड़ी तंजीम खत्म हो जाएगी। उसने कहा, एक वक्त आएगा जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, तुम एक झूठे नबी हो। और उसने चारों तरफ देखा और उसने कहा, देखो वो यहाँ मौजूद है और वही खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह है, वो बरा है, वही वो हकीकी बरा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। उसने ये नहीं कहा यहाँ मेथोडिस्ट आ रहा है, यहाँ बैप्टिस्ट आ रहा है, यहाँ कैथलिक आ रहा है, उसने कहा यहाँ खुदा का बर्रा आ रहा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। बस एक ही महफूज जगह है और वो खुदा का बर्रा है और सिर्फ उसी में निजात है, किसी इंसान में नहीं, किसी अकीदे में नहीं और ना ही किसी चर्च में है, किसी बाप या किसी माँ या किसी मुकद्दस आदमी या किसी मुकद्दस मकाम में नहीं है, बल्कि मुकद्दस खुदा खुदावंद यीशु मसीह में है, जहाँ खुदा ने इंसान की निजात के लिए अपना नाम रखा हुआ है और उसने हम गुनाहगारों की कीमत चुकाई है। बस यही वो जगह है जहाँ निजात है, यही वो चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यूहन्ना ने उसे पहचान लिया, उसने कहा जब मैंने देखा वो चलकर आ रहा है तो मैंने उसे ना पहचाना, लेकिन जहाँ से मैंने अपनी तालीम हासिल की थी, किसी सेमिनरी से नहीं जैसे उसके वालिद ने की थी, एक काहिन की तरह ट्रेनिंग नहीं ली थी बल्कि जंगल में ट्रेनिंग ली। वहाँ वो कादरे मुतली खुदा की थियोलॉजिकल सेमिनरी में गया था और खुदा के कलाम का इंतजार किया था। ये उस बात का मामला नहीं था जो चंद मर्दों ने गढ़ी थी, बल्कि ये उस बात का मामला था जो खुदा ने उसके बारे में कही थी। और जब यूहन्ना ने ऊपर देखा और रूह को आते देखा तो उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ ये वही है, ओ मेरे खुदाया, ये आपके लिए इबादत की जगह है, ये आपके छुपने की जगह है, यहाँ वो खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। कोई चर्च नहीं, कोई अकीदा नहीं और ना ही कोई और है, बल्कि खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। देखें यूहन्ना ने इसे किस मकाम पर रखा, उसने ये नहीं कहा तुम फरीसी सदूकी और हेरोदेसी ठीक हो, उसने कहा यहाँ वो बर्रा मौजूद है, यही जगह है, उसने नाम को जान लिया था, वही एक है आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं है। अब देखें यीशु यूहन्ना के बारे में क्या कहता है। एक दिन यूहन्ना ने ये देखने के लिए उसके पास किसी को भेजा कि देखे वो क्या कर रहा है। यीशु ने उसके बारे में कहा वो महान और चमकता हुआ उजाला है, ताकि उसकी आमद से पहले वो लोगों को ठीक राह दिखाए और लोग उसकी पैरवी करें। ये उसकी पहली आमद थी, ध्यान से सुने, इससे चूक न जाए। यीशु ने कहा यूहन्ना वो उजाला था, मलाकी 3, कोई गलती नहीं। उस नबी ने अपनी अजीम रोशनी के साथ यीशु को फर्दे वाहिद शनाख्त करवाया, यानी बरा। लेकिन वो काहिन बाकी सब बरों के बारे में बात कर रहे थे और बाकी फजूल बातों के बारे में बातचीत कर रहे थे। यहाँ वो बरा था, वो शख्स अपनी अजीम रोशनी के साथ वहाँ मौजूद था जिसके बारे में यीशु ने कहा था। मलाकी 3 में लिखा है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा ताकि वो मेरे आगे राह तैयार करे, और उसे उस एक राह को तैयार करने के लिए भेजा गया था और उसने उस एक मकाम को पहचान लिया था। ये वही है, वहाँ कोई गलती नहीं थी। ये वही है, मैं निशान को उसकी पैरवी करते हुए देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये वही है। एक रोशनी आसमान से नीचे आ रही है और इस पर पड़ रही है। ये यकीनी बात थी कि ये वही था। अब मेरे भाई, खत्म करते हुए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं मलाकी 4 में क्या एक और उकाब का वादा नहीं किया गया है? एक आग के सतून की पैरवी की जाएगी ताकि आज के गुनाहगार चर्च को दिखाया जाए कि अब्रानियों 13:8 कल आज बल्कि अब तक यकसा है। क्या हमसे वादा नहीं किया गया कि एक और उड़ता हुआ उकाब जंगल से आएगा? आमीन, ये बिल्कुल सच है। देखें कैसे ये लूका 17:30 के मुताबिक ठीक बैठता है, जहां इब्ने आदम उकाब अपने आप को जाहिर करेगा ताकि बाकी सब इबादत की जगहों को और तंजीमों को और बाकी जगहों को खराब करार दिया जाए। खुदा ने अपनी जगह का इंतखाब किया है। यूहन्ना ने कहा है ये वही है, और फिर इसी चीज का वादा मलाकी 4 में आज हमारे जमाने के लिए भी किया गया है, ताकि औलाद के दिलों को वापस बहाल किया जाए, ताकि ये बताया जाए कि वो मुर्दा नहीं है और ये बातें किसी और जमाने के लिए नहीं है। यीशु नाम का बपतिस्मा सिर्फ माजी के लिए नहीं था, बल्कि वो आज के लिए भी है। आमीन, ताकि दूसरी इबादत की जगहों को नकारा ठहराया जाए। यही काम आखिरी जमाने के उकाब ने करना है, ताकि ये दिखाए बाकी सब कुछ बेवकूफी है, तंजीम जहालत है, और लोगों की उन निशानों की तरफ रहनुमाई करे जो उसने किए थे, कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। इसी तरह मुकाशवा 4:7 में हमारे पास 4 जानदार थे जिनको हमने देखा था, और हमने देखा था पहला वाला एक बब्बर था। वो पहला जानदार था जो जमाने का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। वो यहूदा के कबीले का बब्बर था। इसके बाद अगला जानदार आता है और हम देखते हैं अगला जानदार एक बैल था जो एक बोझ उठाने वाला और कुर्बान होने वाला जानदार है। रोमन कैथीड्रल के दिनों में चर्च को मार दिया गया, कुर्बान कर दिया गया। फिर अगला आता है, वो एक इंसान था, एक जानदार जिसका चेहरा इंसान जैसा था, और वो इंसान असलाकार था, इंसानी तालीम थियोलॉजी और बाकी चीजों के साथ आया। लेकिन आखिरी जानदार उड़ रहा था, फिर आखिरी जानदार आया, और बाइबल कहती है वो एक उड़ता हुआ उकाब था। हालेलुया। और नबी ने कहा है इस जमाने में ये रोशनी होगी। ओ मेरे खुदाया, उस दिन वहाँ रोशनी होगी। असलाकारों का एक दिन रहा है, एक जमाना रहा है जो कि एक साए की तरह है, उसे दिन या रात नहीं कह सकते। लेकिन शाम के वक्त उकाब के जमाने में रोशनी होगी। जलाल का रास्ता आपको जरूर मिलेगा। आज रोशनी आपके रास्ते में है। यीशु के कीमती नाम में दफन होना है। जवान और बूढ़े अपने सारे गुनाहों से तौबा करें। रूहुल कुद्दस जरूर उसमें तुम्हें बपतिस्मा देगा, क्योंकि शाम की रोशनी आ गई है। ये हकीकत है, खुदा और मसीह एक हैं। आमीन। शाम के वक्त रोशनी होगी, यही खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह है। ओ, ये मैसेज किस लिए आया है और ये क्या करने जा रहा है? और उसके दिन में शाम के वक्त रोशनी होगी, और क्या? ताकि उसके बच्चों को वापस उस हकीकी मौजूदा देश के घर में खुश आमदीद कहा जाए, ठीक उसी आग के सतून के वसीले जिसने बनी इसराइल की बियाबान में रहनुमाई की थी। खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह यीशु मसीह है और बस यही सिर्फ एक मकाम है और खुदा का निजात के लिए वाहिद यही एक नाम है। इसी नाम से आसमानी खानदान नामजद है और यीशु मसीह के इसी नाम से जमीनी नामजद है। ओ चर्च, ओ लोगो, गुनाहगार दोस्तों, यीशु मसीह के अलावा किसी और पर भरोसा मत करना। किसी मुनाद पर भरोसा मत करें, किसी और पर भरोसा मत करें कि वो तुम्हें निजात देगा। किसी तंजीम, किसी अकीदे और किसी चर्च पर भरोसा ना करें, फक्त यीशु मसीह पर भरोसा करें, क्योंकि वो इस वक्त की रोशनी है। आए अपने सरों को झुकाते हैं।
About the evening time, the path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
ओ भाई बहन, अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की है, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया है, तो क्या आप आज रात इसका आगाज करेंगे? क्या आप खुदा को मौका देंगे कि वो आपको उस जगह पर खुश आमदीद कहे जहां आप उसकी इबादत कर सकें? याद रखें, इससे बाहर कोई और जगह नहीं है जहां खुदा ने आपसे मिलने और आपकी इबादत को कबूल करने का वादा किया है। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैं संजीदगी से इबादत करता हूं। कैन भी ऐसे ही करता था। उसने हर उस चीज की नकल की जो हाबल ने कुर्बानी गुजरानी थी, लेकिन उसकी कुर्बानी गलत थी। हो सकता है आप चर्च जाते हो और अपनी दयाकी देते हो और एक मसीह होते हुए अपना फर्ज निभाते हो, जैसे एक मर्द और औरत संजीदगी से फर्ज निभाते हैं। मैं यहाँ तकरीबन 30 सालों से खड़ा हूँ और इस शहर के चारों तरफ इसी मैसेज की मुनादी की है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मैं ज्यादा देर आपके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन याद रखें, अदालत के दिन के लिए मेरी आवाज रिकॉर्ड हो चुकी है और ये तुम्हारे खिलाफ बोलेगी। बस एक ही जगह है जहाँ खुदा अपना नाम रखता है और वो जगह कोई चर्च नहीं है बल्कि यीशु है। एक ही इबादत की जगह है, फक्त एक ही वो मकाम है जिसे आपने कबूल किया है और वो जगह प्यारे यीशु मसीह में है। आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले आदमी निजात पा सके। कोई चर्च नहीं, कोई अकीदा नहीं, कोई भी नहीं है, यीशु मसीह है। और यही इस वक्त का पैगाम है। औलाद के दिन वापस बहाल किए जाएंगे, वापस उस ईमान की तरफ जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। क्या आप आज रात उसे कबूल नहीं करेंगे? और जबकि हमारे सर झुके हुए हैं और जो चाहते हैं उन्हें दुआ में याद रखा जाए, क्या वो अपने हाथ उठाएंगे? हम यहाँ ऑल्टर कॉल नहीं दे सकते हैं क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं। खुदा आपको बरकत दे। मेरे खुदाया, मेरी बाईं जानिब मेरा ख्याल है 300 हैं। अब मेरी दाईं जानिब, क्या आप अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, मैं चाहता हूँ मुझे भी याद रखा जाए? मेरा ख्याल है मेरी दाईं जानिब 150 या ज्यादा लोग हैं। हमारे इस टैबरनेकल में नीचे एक पानी का बड़ा तालाब है। पास्टर एक अच्छे पास्टर हैं, भाई ऑर्मन नेवल मावन हैं और कुछ और भाई यहाँ मौजूद हैं जिन्हें आप देखते और मिलते रहते हैं हर रोज, हर रात और हर घड़ी। ये उनका इंतजार करते रहते हैं जो तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेना चाहते हैं। और अगर आप इस हुक्म को मानते हैं और आप खुदा के वादे के लिए पूर यकीन है, अगर आप दिल से संजीदा हैं, तो पाक रूह के बपतिस्मे को हासिल कर सकते हैं। इबादत की बस एक जगह है। अब ये जगह टैबरनेकल में नहीं है बल्कि मसीह में है। हम उसमें कैसे शामिल होते हैं? एक रूह के वसीले हम सब ने एक बदन में शामिल होने का बपतिस्मा पाया है। आए हम दुआ करते हैं। प्यारे खुदा, जबकि ये हाथ ऊपर उठे हुए हैं, तो ये हाथ जाहिर करते हैं इन उठे हुए हाथों के नीचे दिल में क्या है, और ये एक सबूत है कि ये लोग वाकई तुझसे मदद के तलबगार हैं। ऐ बाप, मैं इनमें से हर एक के लिए दुआ करता हूँ और मैं तेरे कलाम का हवाला देने जा रहा हूँ। तूने कहा है वो जो मेरे कलाम को सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसका यकीन करता है, उसके पास अबदी जिंदगी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता बल्कि वो मौत से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो गया है। ऐ बाप, बस कुछ हफ्ते पहले इस शहर से गया था और वापस आकर इसके बारे में पूछा है। देखें, वो चले गए हैं। खैर, क्या हुआ था? वो चले गए हैं। प्यारे खुदा, एक एक करके हमें बुलाया जा रहा है और एक एक करके हमें इस चैलेंज का सामना करना है और मौत के साए की वादी से गुजरना है। और ये हम सब के लिए है क्योंकि हम फानी हैं लेकिन आज रात तूने हमें हमारी दरखास्त के मुताबिक कबूल किया है, और अगर हम उस पर ईमान रखेंगे और उसके नाम में बपतिस्मा लेंगे तो तू हमें उसमें शामिल कर लेगा और फिर उस बदन में शामिल हो जाएंगे जो मसीह का बदन है, ना के चर्च। और जो मसीह का बदन है उस बदन की पहले ही अदालत हो चुकी है, वो बदन अदालत में नहीं जाएगा। खुदा ने अपना गजब उस बदन पर अंडेल दिया था और वो बदन गुनाह से आजाद है, और उसमें होने की वजह से वो हमें गुनाह से आजाद कर देता है, क्योंकि उसने कुर्बान होकर हमारा कफारा दिया है। और उसमें होते हुए हमारी आपस में रफाकत है, क्योंकि खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों और गंदगी से पाक करता है। खुदा बाप, मेरी दुआ है तू इनमें से हर एक को अपनी बादशाही में कबूल कर। ऐ खुदा, ये बख्श दे, काश इनमें से एक भी खोया ना जाए, यहाँ से कोई लड़का या लड़की, कोई औरत या मर्द खोया ना जाए। ऐ खुदावन, इनमें आज रात मेरे अपने कुछ लोग भी बैठे हुए हैं जो उस लहू से बाहर हैं। मैं कितनी अच्छी तरह अपने डैडी के लफ्जों को याद कर सकता हूँ। प्यारे खुदा, मैं दुआ करता हूँ इनमें से कोई भी खोया हुआ ना रहे। खुदावन, ये बख्श दे, मैं अब अपनी पूरी कुव्वते ईमानी के साथ तुझ पर ईमान लाता हूँ। आज रात तू यहाँ मेरे भाइयों और बहनों और मेरे दोस्तों और उन सब पर जो दूर दराज फोन पर हमारे साथ हैं, जुम्बश कर। मशरकी साहिल से लेकर मगरबी साहिल तक कई मुख्तलिफ रियासतें इसे सुन रही हैं। प्यारे खुदा, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ जो ट्यूसान के रेगिस्तान में हैं, और जो दूर कैलिफोर्निया में, निवाडा और एडाहो में हैं, और दूर वहाँ मशरक की चारों तरफ हैं, और नीचे टेक्सास में हैं, क्योंकि दावतनामा दिया गया था और लोग छोटे छोटे चर्चेज में बैठे हुए हैं, पेट्रोल पंपों पर और घरों में सुन रहे हैं। ऐ खुदा, होने दे कि खोए हुए मर्द और ख्वातीन, लड़का और लड़की इसी घड़ी तेरे पास आ जाए, और इसी घड़ी ये बख्श दे। हम यीशु के नाम में इन्हें मांगते हैं ताकि ये लोग महफूज जगह पर आ जाएं, क्योंकि अभी वक्त है और हम नविश्ता दीवार को देख सकते हैं और जमीन बेचैन है और निजात का वक्त नजदीक है। हमारे देश का एक हिस्सा डूब रहा है और दूसरा हिस्सा जलजले की वजह से फट रहा है, क्योंकि यीशु ने कहा था ऐसा होगा। खुदावन, इन्हें और देर ना करने दे, अब ये इसे कबूल करें, क्योंकि हम इन्हें आपके सामने इबादत और खुशखबरी की ट्रॉफियों के तौर पर पेश करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। क्या आप उस पर ईमान रखते हैं? खुदा आपको बरकत दे। मेरी बाईं जानिब कितने ईमान रखते हैं कि ये सही है? अपने हाथ उठाएं। कितने दाईं जानिब हैं? अपने हाथ उठाएं। खुदा आपको बरकत दे। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ हर कोई ईमान रखता है। दोस्तों, ये सच्चाई है, खुदा जानता है ये सच है। देखें, जब उसमें है और उसमें होते हुए आपकी पहुंच हर उस चीज तक है जिसके लिए वो मुआ था, और वो किसके लिए मुआ था? वो हमारी खताओं के लिए घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के लिए कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? क्या आप ईमान रखते हैं उसके कफारे में अब हमारी शिफा है? क्या हमारे दरमियान कोई बीमार है? दाई जानिब या बाई जानिब, अपने अपने हाथ उठाएं। बीमारों की बहुत बड़ी भीड़ है, मैं इन्हें कतार में नहीं बुला सकता हूँ। आप देखें, मैं इन्हें ऊपर प्लेटफॉर्म पर नहीं बुला सकता। इस तरह करने का कोई तरीका नहीं है। इन लोगों के दरमियान दूसरी जगहों पर भी बीमारों के लिए दुआया इबादत होती है, और चर्चिज में और टेबरनेकल में और बाकी जगहों पर भी होती है। मैं आपसे कुछ पूछने लगा हूँ, यहाँ कितने ईमानदार हैं? अपने हाथ उठाएं, ठीक है। मैं आपको कलाम का हवाला देने लगा हूँ जो कि मसीह है। यीशु ने दुनिया के लिए और कलीसिया के लिए आखिरी हुक्म दिया था, और उसने ये कहा था, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो तंदुरुस्त हो जाएंगे। कितने जानते हैं मरकज 16 सच है, तो कहें आमीन, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ, एक ईमानदार होते हुए अपने हाथ उस पर रखें जो आपके आगे है। बस जो कोई भी आपके सामने है उस पर अपना हाथ रखें, और अब हर कोई दुआ करे और एक दूसरे के लिए दुआ करें। जो कोई भी आपके साथ खड़ा है उस पर अपने हाथ रखें। खुदावन, यहाँ मेरे सामने रुमालों का एक बॉक्स पड़ा हुआ है और छोटे कपड़ों के टुकड़े हैं। कहीं पर कोई बूढ़ी माँ मर रही है, कोई बच्चा करीबुल मर्ग है, और बीमार लोग हर तरफ हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि लोग कपड़े और रुमाल पलूस के बदन से लगाकर ले जाते थे और वो उन्हें बीमारों पर रख देते थे और बुरी रूहें और नपाक रूहें और बीमारियां और रोग लोगों को छोड़ देते थे। अब ऐ खुदावंद, हम जानते हैं हम मुकद्दस पालूस नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं तू आज भी वही यीशु है जो खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह है। और अब आज इन लोगों ने उसी ईमान का इकरार किया है जिस ईमान का इकरार उन लोगों ने किया था, और यकीनन तूने इनके लिए एक रास्ता तैयार किया है। और मैं अपने हाथ इन रुमालों पर रखता हूँ और ये दुआ मांगता हूँ, जब ये लोगों पर रखे जाएं, तो बीमारियाँ और तकलीफें उन लोगों के बदनों को छोड़ दें जिन पर ये यीशु मसीह के नाम में रखे जाएं। अब हमने सीखा है जब इसराइल मिस्र से बाहर आ रहा था और अपनी राह पर गामजन था, और वो लोग मऊदा देश की राह पर जा रहे थे और बहरे कुलजम उनकी राह में आ गया, और खुदा ने आग के सतून में से नीचे देखा और समुन्दर डर गया और पीछे हट गया और इसराइल को मऊदा देश में जाने दिया। ऐ खुदा, आज रात यीशु के लहू में से नीचे देख ताकि बीमारी पीछे हट जाए और शैतान निकल जाए, और होने दे कि लोग अच्छी सेहत और कुवत के देश में चले जाएं, क्योंकि खुदा ने कहा है सब चीजों से बढ़कर उसकी ख्वाहिश है कि आप सेहत हासिल करें। अब खुदावंद यीशु, तू यहाँ देख, इन लोगों ने एक दूसरे पर अपने हाथ रखे हुए हैं। ये अपने ईमान की अलामत को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि तूने कहा है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। ये अपने तरीके से एक दूसरे पर दुआ कर रहे हैं। इनके पास खड़ा हुआ आदमी इनके लिए दुआ कर रहा है। अब खुदावन ये मुकाबला दिया गया है और शैतान एक धोखेबाज है। उसके पास कोई इख्तियार नहीं कि खुदा के किसी बच्चे को पकड़ कर रख सके। वो एक शिकस्त खुर्दा मखलूक है। यीशु मसीह सिर्फ इबादत की जगह है और सिर्फ यही नाम सच्चा है। उसने इसे कलवरी पर शिकस्त दी थी, और अब हम उसके लहू से दावा करते हैं जिसने हर बीमारी और हर रोग को शिकस्त दी है। और मैं शैतान को हुक्म देता हूँ कि इस जमात को छोड़ दे। यीशु मसीह के नाम में इन लोगों में से निकला ताकि ये आजाद हो जाएं। हर एक शख्स लिखे हुए कलाम के मुताबिक अपनी शिफा को कबूल करे, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी गवाही पेश करें और कहें, मैं अब अपनी शिफा को यीशु मसीह के नाम में कबूल करता हूं। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। खुदा की हमद हो, आप यहां हैं। यहां देखें, लंगड़े और बाकी लोग खड़े हो रहे हैं। खुदा की हमद हो, ऐसा ही है, बस ईमान रखें, वो यहाँ है। कितनी जबरदस्त बात है। बाहर वाले सामीन जो बाहर हैं, जो तार के साथ जुड़े हुए हैं, आपको देखना चाहिए। मेरा ख्याल है यहाँ हर एक शख्स, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इनमें से ज्यादातर इस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं। हो क्या शानदार वक्त है, खुदावन की हजूरी है। ये वही है, जहाँ खुदावन की हजूरी है वहाँ आजादी है, वहाँ छुटकारा है। खुदा का रूह हमें आजाद करता है। अब जो शिफा उसने हमें दी है, हम उस पर ईमान रखते हैं। उसने हमें बचाया है, हम उस पर ईमान रखते हैं। जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, तालाब तैयार है। जब भी आप आना चाहें, किसी भी वक्त वहाँ कोई मौजूद होगा जो इसका ख्याल रखेगा। और अब मेरा ख्याल है, इससे पहले हम बर्खास्त हों, हमें वो पुराना कलीसिया गीत गाना चाहिए, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया। अपने हाथों को खुदा के लिए उठाएं और इसे अपने पूरे दिल से गाएं। हम आपसे ठीक इसी इमारत में सुबह 9:30 बजे मिलना चाहते हैं, ताकि शादी और तलाक के उन्वान पर सीख सकें। ठीक है। आए अब मिलकर गाते हैं। अब ये अजीम जमात मिलकर गाए, वहाँ बाहर तारों से जुड़े हुए लोग भी इसे गाएं। उसने ये कहाँ किया था, कलवरी के दरख्त पर। जब हम दोबारा इसे गाएं, तो मैं चाहता हूँ आप अपने साथ वाले से हाथ मिलाएं और कहें, खुदा आपको बरकत दे मुसाफिर। ओ, क्या आप उससे प्यार नहीं करते? क्या वो शान वाला नहीं है? क्या वो आपके छुपने की जगह है? वो थकी हुई जमीन में एक चट्टान है और आंधी में मेरी पनागाह है। मैं उसी एक महफूज जगह को जानता हूँ, इसीलिए मेरा ईमान तुझे तकता है। तू बड़ा कलवरी का है, इलाही नजात दहिंदा है। अब मेरी सुन, जबकि मैं दुआ करता हूँ, मेरी सारी खताएं दूर कर दे और आज के दिन से मैं मुकम्मल तौर से तेरा हूँ। आए अपने हाथ उठाकर हम इसे गाते हैं। आए अब हम अपने सर को झुकाएं और इसे गुनगुनाएं।
Life's dark maze I tread, and grief around me spread. Be thou my guide, mid darkness turn to day. Why sorrow's tears away? No, let me ever stray from thee.
जबकि आपने अपने सर झुकाए हुए हैं, तो हमारे प्यारे पास्टर भाई ओरमन नेवल सामीन को बर्खास्त करेंगे।